मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग प्रेम से और हृदय से और जोर से पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कॉल आप करने के लिए आए हैं ना, वो यहाँ पर लोकल है, लोकल कॉल, इसलिए आपको दिल से पुकारना चाहिए, है ना। बाहर गांव से कॉल करेंगे तो लगेगा ना एसटीडी और वो रोमिंग वगैरह, यहाँ पर लोकल कॉल है। और जहाँ पर आपकी आवाज और पुकार दर्ज करने का स्टेशन है वो यही है बरसाना, यहाँ पर कृष्ण भगवान भी आके आपकी पुकार दर्ज करते हैं, तो आप लोग भी पुकारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सैकड़ों भक्त गुरु महाराज के निर्देश में इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, तो उनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं यात्रा में आने से, है ना। बहुत लोग यात्रा में नहीं आते हैं, नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग आए हैं इसलिए आपका धन्यवाद है, क्योंकि इतना सारा आयोजन जो है वो आप लोगों को और हम लोगों को सब लोगों को श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए इसलिए की गई है। क्योंकि वृंदावन धाम का जो पर्पज़ है, जो जिसके लिए उसको पृथ्वी पर लाया गया है, राधा रानी की इच्छा से लाया गया है। तो पृथ्वी माता रो रो कर गई थी क्षीर सागर के किनारे, वहाँ से वो गौलोक धाम, उनको क्षीर उदकशायी विष्णु जो है वो अपने सागर से उनको गौलोक धाम ले गए, और गौलोक धाम में श्री कृष्ण भगवान ने फिर वादा किया कि हम आएंगे। उस समय राधा रानी बेहोश हो गई, तो उनको होश में लाया गया और पूछा क्या हो गया आपको, बेहोश क्यों हो गई आप। उन्होंने कहा कि आपके आने वाले विरह के विचार से मैं बेहोश हो गई। बोले क्यों, मैं तो आपको ले जाने वाला हूँ, मैं आपके बिना नहीं जाऊँगा पृथ्वी पर, जो भी पर्पज़ है परित्राणा या साधु नाम। वो कहते हैं जहाँ पर श्री वृंदावन नहीं है, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत नहीं है, जहाँ पर यमुना जी नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं जा सकती। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपके इस मंतव्य को जानते हुए पहले से ही मैंने गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा, पूरी यमुना जी और पूरा गोवर्धन पृथ्वी पर भेज दिया है। तब उन्होंने कहा कि फिर हम आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज हमारे पृथ्वी लोक पर वृंदावन धाम है, पूरा गोवर्धन पर्वत है या पूरी यमुना जी है, तो वो केवल राधा रानी की कृपा है। अगर उनकी अगर ऐसी मंतव्य नहीं होता तो ये सब दिव्य स्थान यहाँ पर नहीं होते। और उसका अंतरंग कारण क्या है कि हम जैसे बद्ध जीव जो कई जन्मों तक यहाँ भटक रहे हैं और साथ साथ दुख भी भोग रहे हैं, कृष्ण की विस्मृति में कृष्ण को सेवा को छोड़कर भौतिक इच्छाओं को भोगने की इच्छा रखते हुए, उन सब लोगों को एक मौका देने के लिए यहाँ पर वृंदावन धाम प्रकट किया है। क्या है मौका, वो मौका यह है कि हम लोगों को एक बार दोबारा लौट जाने की प्रेरणा प्राप्त हो। आ अब लौट चले, भगवान कह रहे हैं बहुत हो गया यहाँ पर, बहुत मजा चख लिया, बहुत लत्ता प्रहार माया का चख लिया। तो वो जो उद्देश्य है उनका, जिस उद्देश्य से इस वृंदावन धाम को यहाँ प्रकट किया है, उसको सफल करना भी हमारी सेवा है। उस प्रोग्राम के अनुसार, उस योजना के अनुसार अनुकूल हो जाना, अपने मंतव्य को अपने चेतना को अनुकूल बनाना और उस उद्देश्य को पूरा करना, यानी यहाँ से गौलोक धाम जाने की जो योजना है उसको सफल करना, ये भी हमारी सेवा है। तो हम उन सब भक्तों के ऋणी हैं जिन्होंने, सैकड़ों भक्तों ने कम से कम 12 महीने से यहाँ पर, मुझे पता है कितना उन्होंने यहाँ पर आयोजन के लिए कितनी बार विजिट किया है, और आप लोगों को कोई कष्ट न हो, असुविधा न हो, और अधिक से अधिक कृष्ण कृपा राधा कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए इन्होंने मेहनत की है। तो धाम की कृपा प्राप्त करना है तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म होना चाहिए कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड। जब हमारा हृदय नम्र है और भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, धाम के प्रति कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है, तो ऐसे कप में, ऐसे सिचुएशन में सबसे अधिक कृपा जो हम बटोर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, है ना, बहुत शहर से आए, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कहाँ कहाँ से आए हैं, बहुत लोग अमेरिका से आए हैं, वहाँ पर अलग अलग भाव में लोग रहते हैं, जिसको प्रधानता से तमोगुण, रजोगुण, इस प्रकार के कार्य में हम लोग रहते हैं। हमारा शहर ऐसा ही है, रजोगुण में रहता है शहर, है भाग दौड़ करना हमेशा, धन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इंद्रिय भोग के लिए, तो वो सब हमको कम से कम इस समय त्याग देना है मन से, कुछ समय के लिए क्यों ना हो बाजू में रखना है उसको, सब कुछ ड्रॉप करना है। कम से कम साल में एक बार गृहस्थों के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए, सब जीवों के लिए, कम से कम, मे बी मोर देन दैट, लेकिन कम से कम एक बार सब कुछ छोड़कर, जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में शरण लेने के लिए आना चाहिए। और यहाँ पर आने से जितना हमारा दिल और मन केंद्रित है इस कृपा को प्राप्त करने के लिए, उतना हमारी यात्रा सफल है। यहाँ पर पहुँचने से ही, उसी क्षण से, हृदय के अंदर के कोने से राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना, उसके लिए याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। जितने क्षण आपको यहाँ पर मिले हैं, जितने मिनट मिले हैं, जितने घंटे मिले, जितने दिन मिले हैं, वो सारा समय हमको यहाँ पर राधा रानी की कृपा याचना करते हुए बिताना है। हो सके तो रो रो के प्रार्थना करना है, क्योंकि जिस कृष्ण की चरण रज की प्राप्ति करने के लिए हम आते हैं वो भी इनकी याचना करते हैं। बरसाना धाम जो है वो अंतरंग धाम है, पूरा ब्रज मंडल जो है, मथुरा मंडल जो है, वो श्री कृष्ण का घर है, इसको निज धाम कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया, लीलाएं की, और पूरा विश्व जो है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे अनंत ब्रह्मांड है, वो सहा के सब लोग यहाँ पर आकर श्री कृष्ण की चरण रज देना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भी खुद के लिए रज लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिस रज में आप लोग बैठे हो ना, वो रज राधा रानी और उनके सखियों के चरणों की रज है, तो केवल यही मुमकिन है, यही मिल सकती है। वो रज की प्राप्ति के लिए वो स्वयं अपनी साधना के रूप में यहाँ पर आते हैं, हृदय में राधा रानी के दो दिव्य चरणों का ध्यान करते हैं, मुख से उनका नाम उच्चारण करते हैं और इस रज में लोटपोट हो जाते हैं। देखिए आप, हमारे जो आराध्य हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हमारे जो आराध्य कर रहे हैं वो हमको करना ही चाहिए, और ये पूरे वृंदावन धाम में उनकी रज के लोग तरसते हैं, और जिनके लिए तरसते हैं रज के लिए, वो स्वयं आकर यहाँ पर तरसते हैं। तो ये अंतरंग धाम है जहाँ पर अंतरंग लीलाएं होती हैं। ये इतना पवित्र धाम है कि यहाँ पर किसी राक्षस का वध भी नहीं हुआ है, क्योंकि राधा रानी चाहती थी कि सब लीलाएं लीलाएं दिव्य हैं, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी उत्कट होती हैं, ऐसी तीव्र होती है, ऐसे अंतरंग होती है कि वो उसमें व्यवधान नहीं आ सकता है, देर कैनॉट बी ए इंटरप्शन इन दैट। तो इसलिए जब कंस यहाँ पर आया, कल रात को मैं पढ़ रहा था तो मुझे और एक बात ध्यान में आई कि कंस अकेला नहीं आया था, घोड़े पर बैठ के आया था, खोजते हुए कि मैंने राक्षस को भेजा गोकुल में, लेकिन वो तो कहाँ गए पता नहीं, गोकुल में कोई है नहीं, सब खाली हो गए गोकुल। तो दो सेनापतियों को, उनके दो पुत्रों को, चार लोगों को उन्होंने भेजा, तो ढूंढे ढूंढे आ गए तो उनको नंदगांव में कृष्ण बलराम मिले। तो आदेश था उनको पकड़ के मारना है, तो पकड़ने गए, स्पर्श करते ही वो पत्थर हो गए, उसको बाद में यशोदा मैया ने हाउ बिलाव करके उपयोग किया उनका डराने के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि शांडिल्य ऋषि ने शाप दिया था यहाँ पर कोई भी राक्षस आएगा तो पत्थर बन जाएगा, तो ये लोग आए तो चार पत्थर बन गए। तो कंस को लगा जो भी जाता है तो खाली वन वे टिकट में जाता है, रिटर्न में कोई आता ही नहीं है। चलो मैं खुद जाके देखता हूँ कहाँ गए ये लोग। घोड़े पे बैठ के आया, काले घोड़े पर बैठ के आया, और यहाँ पर एक सुंदर जगह है, इसका नाम है भानुखर। वृषभानु महाराज का निजी कुंड है, हाँ, प्राइवेट स्नान करने का कुंड है। वहाँ पर वो आया, तभी श्री जी वहाँ पर स्नान कर रही थी राधा रानी, तो उसको देख के श्री जी को याद है कि यही ये व्यक्ति, इसने सब ब्रज में आतंक बना के रखा है। तो केवल इच्छा मात्र से, राधा रानी ने केवल इच्छा मात्र से चक्रवर्ती सम्राट कंस को और उसके घोड़े को कन्या बना दिया। यानी कंस महाराज जो थे, अभी क्या बताएं, इसका इतना लंबा लंबा वर्णन दिया कि कंस ने कितना बड़ा पराक्रम किया। संक्षिप्त में, रावण हिरण्यकशिपु इससे भी बहुत भयंकर बलशाली थे कंस, क्योंकि रावण तो वो शिव धनुष उठाने का प्रयास कर रहा था, कंस के पास विष्णु का धनुष था। कंस ने महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाया था, परशुराम जिस महेंद्र पर्वत पर बैठे थे उसको 100 बार उठाया और हिलाया उन्होंने, इतना शक्ति किसके पास नहीं था। वो चक्रवर्ती सम्राट कंस जो है, जिसका दुनिया में दबदबा था, उसके लिए भय था सबके मन में, वो यहां पर आके केवल राधा रानी की इच्छा से कन्या बन गया। तो उसका नाम पड़ा मोटल्ली गोपी, कंसनी गोपी। उसके घोड़ा भी घोड़ी बन गई। इतना रोया वो, इतना रोया, सबके चरणों में गिरा। भी देखो क्या समस्या, देखो यहां पर रहने से सब लड़कियां ताली पीट रही है, अच्छा हुआ हमारे कंस महाराज कंसनी बन गए, अच्छा हो गया। अब यहाँ की लड़कियां, जो गांव की लड़कियां जो गाय को सेवा करती है, गोपियां हैं, वो सब हंस रही है, तो यहाँ पर भी संकोच है। और इस अवस्था में यहाँ से भाग जाए और मथुरा चले जाए तो ऊपर बड़ा संकोच है। वो सब सेनापति, रानियां, दबदबा, वो सब कहाँ किसको मुंह दिखाएंगे, इतना बड़ा संकोच कर दिया उनका। वो सब गोपियों के चरणों में गिरे, लेकिन गोपियां बोली नहीं, कंडे बनवाओ। कंडे बनाना मतलब क्या, पहले गोबर इकट्ठा करना होता है गौशाला से, गौमूत्र से मिश्रण करके लाना होता है, ब्रज रज में उसको मिक्स करना होता है, फिर गोल गोल थप्पी लगाना पड़ता है, फिर वो कहीं प्लेटफॉर्म पे, कहीं पेड़ के शाखा पर, कहीं पर्वत पर सुखाना है उसको, ध्यान रखना है उसको, इकट्ठा करना है, टोकरी में इकट्ठा करके सर पे लेके जाना है। और एक यहाँ पर ना वो गोबर का एक घर भी बनता है, पता है आपको, कंडों का एक घर बनता है, सब बहुत हाथ हाथ से लगा के उसके अंदर कंडे स्टोर करते हैं। वो सब काम पूरा करना है, कहते हैं 6 महीने तक कंसनी गोपी से गोपियों ने कंडे लिपवाए। सब तालियां बजाओ, हरि हरि बोल। 6 महीने रो रो कर उन्होंने कंडे बनवाए। अभी देखो, अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीर भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास। सब भक्त लोग कामना क्या करते हैं कि गोपी शरीर मिल जाए, गोपी भाव मिल जाए, गोपी रूप मिल जाए, गोपी रूप में सेवा करे भगवान की। इसको तो अनायास ही गोपी रूप प्राप्त हुआ था, है ना, मतलब जीवन का परिपूर्णता उसने प्राप्त कर लिया था ऑलरेडी, बिना किसी मेहनत करते हुए, साधना करते हुए। उल्टा भगवान का द्वेष करता था वो, लेकिन यहाँ पर आकर इस राज्य में वो गोपी बन गया, जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर गया वो, तो क्या प्रॉब्लम था फिर? प्रॉब्लम था उसकी चेतना विपरीत थी, इसलिए जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के बाद भी वो रोता ही रहा। इसलिए गोपी शरीर प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये दर्शन करना, वो दर्शन करना, ये हुआ साक्षात्कार, ये सब कुछ मतलब नहीं है जब तक हमारी चेतना दास दास अनुदास की नहीं है, वो कंस की नहीं थी। इसलिए परम सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी वो रोता ही रहा और बार बार प्रार्थना करता रहा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली जो है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है अनुकूल चेतना, अनुकूल्यस्य कृष्ण अनुशीलनम, ये बहुत आवश्यक है। प्रतिकूल चेतना लेके हमको यहाँ पर सब कुछ मिलने पर भी हम भिखारी रहेंगे। तो 6 महीने के बाद में वो बेचारा आंखों में आंसू लेकर कंडे लिप रहा था, तो वृषभानु महाराज की उंगली पकड़कर राधा रानी आई, तो वो चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किया उसके, किशोरी दया करो राधे, किशोरी दया करो। तो वृषभानु महाराज ने कहा, वो जानते हैं ना, वो भाई हर साल में एक बार जाते हैं ना टैक्स पेमेंट करने के लिए, वो जानते हैं कौन है, उनको पूरा पता है कि ये व्यक्ति जो औरत बना हुआ है वो है कौन। तूने कहा ठीक है, देखे माफ़ कर दो, अभी पश्चाताप कर रहा है। तो राधा रानी उंगली उठाई, बोले खबरदार, अगर दोबारा यहां पर आओगे परमानेंट कन्या बन जाओगे। तो उन्होंने कहा, उसमें वो जावट में थी, उधर एक किशोरी कुंड है बहुत सुंदर, उन्होंने कहा इसमें छलांग लगाओ और छलांग लगा के पुनर्वत पुरुष बन जाओगे आप। तो झटाक से छलांग लगाई, वो पुरुष बन गया, और पुरुष बन के जो भागा बिल्कुल पीछे भी मुड़कर देखा नहीं, सीधा मथुरा तक, क्योंकि अगर बीच में माइंड चेंज हो गया राधा रानी का तो उसके पहले ही पहुंचना चाहिए। और दोबारा लौट के नहीं आया, ना कोई साथी उसका आया ना खुद आया। इसको कहते हैं राधा रानी का महाप्रताप। ये जो कथा है वो एक विस्मय लीला करके कथा हुई है, उसमें वर्णन की जाती है। ब्रजवासी लोग नंद बाबा को अपनी बिरादरी से बरी करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने उनको नामकरण में नहीं बुलाया, ऐसा उनको पता चला कि नामकरण गुप्त रूप में हुआ था। तो गोवर्धन को पग उठाने के बाद में उधर चर्चा हो रही थी चौरासी खंबा में, कह रहा कि आपका पुत्र कितना महान है, वह शायद ऋषि होगा, शायद ये होगा, शायद देवता होगा, शायद कोई महान व्यक्ति होगा, कोई सिद्ध पुरुष होगा, ऐसे ऐसे। तो एक एक बात को नंद बाबा टाल रहे थे, अचानक बीच में बोलते हैं कि हाँ हाँ, गर्ग मुनि जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये एक दिन गिरिधारी बनेगा, गिरिराज को उठाएगा। तो सर बोला क्या क्या बोला आपने, गर्ग मुनि कब आए थे यहाँ पर? मतलब ऐसे खेल खेल में बोल बोल में भांडा फूट गया, पोल खुल गया। सुन रहा, अरे बाप रे कहाँ बोल गया मैं, लेकिन इतने आनंद में थे तो आनंद में वो बात निकल गई जो रहस्य वाली गुप्त बात थी। तो सब लोगों ने कहा कि इनको निकाल दो हमारी बिरादरी से, अपने भाई कहते हैं, राजा कहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारी सब चुप 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 के काम करते हैं, इनको हमारी ब्रजवासियों के बिरादरी से निकाल दो। तो ब्रजवानु बाबा खड़े हो गए, बोले ऐसा नहीं, देखो उनकी समस्या को समझो आप, इतना बड़ा डिफिकल्टी था, उधर से वसुदेव का मैसेज था कि ऐसे ऐसे कंस का इरादा चल रहा है, आप जल्दी जाओ और मेरे बच्चों का वहाँ पर नामकरण करो, लेकिन अगर आप ओपनली करोगे तो कंस को पता चलेगा कि मैं आपका पुरोहित हूँ, कुल पुरोहित, और जो बच्चों का मैं नामकरण करने वाला हूँ वो शायद उनके ही बच्चे होंगे जो गोकुल से मथुरा से गायब हो गए हैं ना, इसलिए वो गौशाला में गुप्त रूप में किया गया। लेकिन ये कहा मानने को तैयार है, वृषभानु आप नंद बाबा का पक्ष ले रहे हो, आपको भी बरी कर देंगे। तो तीसरा गुप्त खड़ा हो गया उस समय, अरे वृषभानु महाराज को ऐसे मत कहो, इनकी कन्या के महाप्रताप से हम लोग यहाँ जीवित हैं। और तब ही आके उन्होंने ये कहानी बताई। तो ये कहानी सुनते ही सब क्रोध शांत हो गया, सब लोग ने वृषभानु महाराज नंद महाराज को गले लगाया, और सबका जो बरी करने का और बर्खास्त करने का ना विचार था ना, वो सब रद्द हो गया। तो ये सब मैंने आपको क्यों बताया, अगर यहाँ पर कोई आतंक नहीं हुआ और नहीं है तो उसका कारण एकमेव है, राधा रानी। कृष्ण भगवान ने तो बहुत सारा ऐसा, किसी के मुंह में हाथ डाला, किसी के पैर उठाए, किसी को गोल घुमाया, किसी को पूंछ से उठाया, किसी को मुक्का मारा, किसी को सिंग उखाड़ के पेट में घुसाया, ऐसा करके बहुत मेहनत किया। राधा रानी ने कुछ मेहनत नहीं किया, राधा रानी ने खाली इच्छा किया स्नान करते करते कि इसको औरत बनाया जाए। ये राधा रानी का महाप्रताप है। हाँ, और एक बताता हूँ उसका महाप्रताप क्या है। वो गिरिराज के नीचे सब लोग खड़े थे ना, तो अपना अपना सब लोग सोच रहे हैं अपने अपने विचार से। तो मैं यह सोचा, देखो कितना अच्छा हुआ, इतनी पद्मगंधा गायों का मैंने देखभाल किया, उनको वो घास खिलाया, उनको वो मक्खन बनाया, घर पे इतना मेहनत किया और प्रेम से ऐसा छांट छांट के गायों का दूध पिलाया और वो मक्खन खिलाया, देखो आज काम आया ना, देखो एक हाथ पे उठा के खड़ा है वो। हाँ, कह रहे हैं भाई बेटा तुम थोड़ा हाथ चेंज करो, मैं आपका थोड़ा मालिश कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा मक्खन भी खिला दूँ, बेचारे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो ऐसे ही सोच रहे हैं, पर ग्वाल बाल उनको देख रहे हंस रहे, अरे मैया को तो कुछ पता नहीं है, हमने रोज गऊ चराते हुए जो कुश्ती खेल के हरा हरा के उसको मजबूत बना दिया, रोज उसको डिफीट किया हम लोग ने, चितपट करा दिया, आसमान दिखा दिया उसको रोज। उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है, एक समझो आप, कृष्ण भगवान को कौन हरा सकता है बताओ, छोटे छोटे ग्वाल बाल कैसे हरा सकते हैं? लेकिन कृष्ण जो है इच्छा से उनसे हार जाते हैं, इच्छा से हार जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के सामने खुद प्रयत्न पूर्वक, इच्छा पूर्वक, योजना पूर्वक हार जाते हैं। हम लोगों को भी कभी भक्तों के सामने जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं अपने भक्तों के सामने हारने के लिए ब्रज में आते हैं। अभी आगे कथा बताऊंगा, उसमें भी यही रहस्य है। भक्तों के सामने कभी भी वाद विवाद करके जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनसे हार मानना ही आपके हित में है, क्योंकि जब वो भक्तों के सामने हार मान लेता है उस पर राधा रानी की कृपा होती है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो तो फिर वो कह रहे हैं कि इनको हरा हरा कर हमने इतना मजबूत बना दिया कि आज देखो काम आया ना, पूरा गिरिराज को उठा के खड़ा है, ये हमारा श्रेय है। तो वहां से गोपियां उनको देख के हंस रही है, अरे इन ग्वाल वालों को कुछ पता नहीं है, तो गैया चराते रहते हैं, इनको क्या मालूम। तो वो गए, उन्होंने सुना ऐसे गैया गोपियां कह रही है, तो गोपियों के पास गए, पूछा क्या है आपके विचार क्या है। वो कहते हैं आप लोग ना मैया का दूध है ना आपका कुश्ती है, ये राधा रानी उनको देख रही है ना वहां से, यहाँ तिरछी चितवन साइड लॉन्ग ग्लांसेस, देखो वो कहाँ देख रहे हैं आप, देखो देखो सब वो कहाँ देख रहे हैं, सब लोग ने उनको देखा, वो कहाँ देख रहे हैं, और राधा रानी की ओर देख रहे हैं, राधा रानी उनको देख रही है। तो वो कहते हैं ये इनकी नजरों का बल है, इनकी नजरों में इतनी शक्ति है कि इनके आंखों से उनकी आंखों में पहुंच रही है और वो आंखों से हाथ में आ रही है और हाथ से पर्वत उड़ रहा है। ये तो समझ में नहीं आया उनको ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये लीला समाप्त होगी ना तो बाद में आपको दिखाएंगे। तो लीला समाप्त हो गई, उसके बाद में फिर कृष्ण भगवान यहाँ वहाँ देख रेख कर रहे थे कितना डैमेज हो गया। तो यहाँ पर ग्वाल बाल गोपियों के मिलने आए, राजा रानी भी थी उसके अंदर। बोला अभी समय है, अभी दिखाओ, अभी उठा के दिखाओ, अगर आपने कहा कि आपके नजरों के बल से गिरिराज को उठाया भगवान ने, तो अभी आप भगवान के बिना खुद नजरों से उठा के दिखाओ। तो राजा रानी ने गिरिराज के तले पर अपना नजर फिक्स किया, तलेटी पर, तलेटी मतलब बॉटम, और ऐसे नजर जब रुकाया वहां पर, तो गोपियों ने कहा हाँ हाँ श्री जी उठाओ उठाओ। तो राजा रानी ने नजर ऐसे ऊपर उठाया तो पूरा गिरिराज आसमान में चला गया और वो ऊपर देखती रही, पर्वत आकाश में रहा, कृष्ण भगवान उंगली उनकी जितनी हाइट थी और उनकी जितना हाथ ऊपर किया था उसके ऊपर जो उतना ऊंचाई में थे, राधा रानी की नजरों के बल से वो बहुत दूर तक आकाश में चले गए और वहीं रहे। और राधा रानी देखती रही, फिर कहा नीचे रख दूं क्या, बोला ठीक है रख दो। फिर धीरे से नीचे देखा और बहुत प्रेम से उनको जमीन पर वापस रख दिया। तो यह उनका महाप्रताप है। तो उनको कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्जिश करने की, दंड बैठक करने की जरूरत नहीं है, वो प्रेम का बल है। जो उस प्रेम के बल के लिए कृष्ण भी लालायित रहते हैं। तो राधा रानी चलती है ना, तो उनके घुंघरू के आवाज से वेद की वाणी निर्माण होती है। वेद वाक्य, वेद श्लोक जो है, वेद वाणी, दिव्य वाणी, वो उनके घुंघरू के आवाज से निर्माण होती है। रस, रस जो हम कहते हैं ना, रस की भी तो बहुत बड़ी बात है, वो हमारी योग्यता नहीं है उसको कहने की, लेकिन रस का व्याख्या ऐसा है कि जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, प्रेम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो रस की निर्मिति होती है। यानी किसी का शांत रस, किसी का वात्सल्य रस, किसी का दोस्ती का रस, किसी का माधुर्य रस, ऐसे अपने आप प्रकट हो जाता है वो, और फिर वो विकास होता है उसका। तो वो रस की उत्पत्ति राधा रानी के चरणों से होती है। और श्री कृष्ण रसराज है ना, वो उनका पूरी विश्व में ख्याति है, रसराज है वो। वो भी अपने रसराज की पदवी जिस चीज से मिली है, उस रस की प्राप्ति राधा रानी से करती है, करते हैं। रस को राधा रानी से प्राप्त करते हैं, फिर रस का विकास करते हैं, फिर पूरे ब्रज में उसका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो श्री कृष्ण भी अगर रसराज कहलाते हैं तो उनका रस का जो उगम है वो राधा रानी है। अगर प्रेम को अगर आप समझेंगे कि प्रेम एक अथाह सागर है, प्रेम वस्तु मतलब सागर है पूरा, और उसको कोई था नहीं है, कोई गहराई नहीं है, अनंत गहराई, अनंत था है उसकी, कोई था ही नहीं मिलती उसकी, अथाह कहते हैं उसको हम। तो प्रेम के सागर का अगर मंथन किया जाए और उसमें अगर नवनीत निर्माण किया जाए तो वह नवनीत राधा रानी है, वो प्रेम का सागर कृष्ण है, वो प्रेम का संपृक्त जो स्वरूप है, सैचुरेटेड इरप्शन इज राधा रानी। कृष्ण अगर जीवित हैं और जीवंत रहकर यहाँ पर लीला करते हैं तो कृष्ण की हृदय संजीवनी राधा रानी है, कृष्ण का जीवन का स्रोत, जीवन शक्ति का स्रोत राधा रानी है, उन्हीं की वजह से कृष्ण है। कहते हैं जब कृष्ण के साथ वो रहते हैं राधा रानी, तो ही कृष्ण को तेज प्राप्त होता है, और जब राधा रानी नहीं रहती है तो वो मलूल रहते हैं, बहुत निस्तेज रहते हैं, एक तो विरह भाव में और एक राधा रानी का संग न होने से। एक हमने कल अच्छा श्लोक पढ़ा था, यत्रास्ति श्रीमद् वृषभानु मंदिरम प्रभा सहस्रामलचंद्रम सुंदरम यद ज्योत्स्न्या राजित नंद मंदिरे ची क्रीड बाल्ये नंदु नंदन नंदनहा। कि यहां से एक गौर तेज निर्माण होता है, बरसाने से, और वो बरसाने का गौर तेज जो है वो नंदगांव को भी ढक लेता है, वहाँ पर नील ज्योति है श्री कृष्ण के रूप में, और वो श्री कृष्ण को साथ में न होते हुए विरह का अनुभव ना हो इससे राधा रानी का तेज वहाँ पर नंदगांव को लिप्त करते रहता है। ये राधा रानी की स्थिति है। यहाँ तक कि वृषभानु महाराज ने अपनी कन्या के महाप्रताप से अपने मित्र नंद महाराज को भी यहाँ पर सेटल कर दिया सुरक्षित रूप में नंदगांव में, क्योंकि नंदगांव, बरसाना और जावट इन तीन विभागों को उन्होंने अपने महाप्रताप से कवर करके रखा था, इसलिए तीन विभागों में कोई राक्षस यहाँ पर कभी आया नहीं। ऐसी राधा रानी के धाम में हम आए हैं, इसलिए अपने ध्यान को, अपनी चेतना को बटोर लो, एक जगह इकट्ठा करो और उनके चरणों में अर्पण करो। हम सब लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? अपने आप को, अपनी चेतना को, अपनी भावना को, अपने विचारों को, अपने उद्देश्यों को, सभी वस्तुओं को राधा रानी के चरणों में पूर्णतः समर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, और इसी के लिए यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब जब शरणागत होते हैं तो ही आगे जाकर कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण वैसे जैसे बहुत कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम योजना पर्युपासते, वो अनन्य मतलब क्या, एक एक आयोटा यानी एक कर्ण भर भी अगर आपका ध्यान कहीं और है उनके अलावा तो उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो अन्य किसी भी अन्य वस्तुओं को 100% छोड़ देते हैं और पूरे 100% अपनी चेतना, अपना समर्पण उनके चरणों में करते हैं, तब श्री कृष्ण आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 100% शरणागति नहीं भी हो फिर भी राधा रानी स्वीकार कर लेती है, और अपने हाथों से जब कृष्ण को अर्पण करती है, जो कृष्ण कभी मुड़कर भी देखते नहीं है, जब राधा रानी, अगर राधा रानी के हाथों में आप हैं, उनके लिए आपने शरणागति कर दी है, उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है और उनके हाथों में आप है और वो कृष्ण को अर्पण कर रही है, तो कृष्ण को न चाहते हुए भी आपको स्वीकार करना होगा। राधा रानी का दरबार ऐसा है, सब दुख दर्द यहां मिट जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और जो सब जगह से क्या कहते हैं ना, मार खा चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, तो वो सब बेसहारों का सहारा भी राधा रानी का धाम है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। और हम सब लोग वैसे ही बेसहारा हैं, क्योंकि हम लोग ने अभी तक केवल माया का, लत्ता प्रहारी का ही अनुभव किया है, और सब प्रेम के लिए लालायित हैं, आनंद मयोभ्यासात, तो हमारा कुछ कॉन्ट्रास्ट है, मतलब हमारा दिल कहीं और है, हम चाहते हैं कुछ और है, और मिलता तो कुछ है नहीं। इसलिए जो वांछित है, जो चाहते हैं हम, वो चाह प्राप्त करना है तो यहाँ पर आना है, और करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, उसमें छाट छाट कर कुछ लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये आसान धाम नहीं, ये बहुत अंतरंग धाम है। जैसे कि आपके घर में अगर आएंगे तो आप हमें बेडरूम तक नहीं लेके जाएंगे, वो बाहर ही बिठाएंगे, चाय पिला के भेज देंगे, लेकिन घर का कोई प्रिय व्यक्ति आएगा तो वो अंदर तक उसको ले जाएंगे, अंतरंग कक्ष में भी उसको प्रवेश देंगे। उस तरह से ये कृष्ण भगवान का, राधा रानी का अंतरंग कक्ष है, इसमें हम लोगों को प्रवेश मिल रहा है, ये उनकी कृपा है हमारे ऊपर, अनन्य कृपा है। इसलिए यहाँ पर जितना भी समय मिलेगा ना, उसको यहाँ वहाँ मत देखना, आप क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है इधर, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ के लोगों को जाने आने का रास्ता रखना है आपको, प्लीज़ गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस। क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर लोग, क्या कर रहे हैं बताओ उनको आप। तो मैं ये सब इतनी बता रहा हूं कि आप लोगों की चेतना राधा रानी के धाम को प्रवेश करने के और यहाँ की कृपा बटोरने के योग्य हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा समय बिता रहा हूं। तो अनन्य कृपा अगर प्राप्त करनी है तो नम्रता, शरणागति और समर्पण, और वो भी एकाग्रता के साथ। हाँ, यहां वहां चित्त को भटकाना नहीं है, हृदय से हमको एकाग्र करना है मन को, और राधा रानी के चरणों को हृदय में स्थापना करके उनकी कृपा याचना करते रहना चाहिए, तब जाकर आपका वृंदावन धाम की यात्रा भी सफल है, यहाँ पर आना भी सफल है, क्योंकि यहाँ पर बार बार तो आना होता नहीं ना। और राधा रानी की बड़ी कृपा है कि वो मेडिकल कैंप के माध्यम से लोगों को यहाँ पर सेवा देती है, क्योंकि एक है यहाँ पर आना, और कहते हैं कि 9 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं अहमदाबाद से, पहले 7 करोड़ थे, अभी बहुत धार्मिकता बढ़ गई, 9 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं, और ऊपर जाते हैं पहाड़ पर, दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत प्रेम करते, प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर सेवा प्राप्त होती है धाम की और धाम वासियों की। तो जब धाम की और धाम वासियों की सेवा प्राप्त होती है तो सही रूप से राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप लोग यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो प्रार्थना करना कि हमें कुछ सेवा दीजिए आप, चाहे हम बंबई में रहे, दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, आपकी सेवा का अवसर दीजिए। कहीं ना कहीं से रहते हुए भी, शरीर कहीं भी रहे, दिल जो है राधा रानी की सेवा में लगा रहे, कनेक्टेड रहे। वो जो कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आना जाना तो लगा रहता है ना, आना जाना तो लगा रहता है, आएंगे जाएंगे, हर अगली बार आएंगे अगली बार जाएंगे, लेकिन जब भी आएंगे और जब भी जाएंगे तभी कनेक्शन जो है वो बना रहना चाहिए कॉन्स्टेंट। हर रोज सवेरे जब उठेंगे ना, पहली बार आंख खोलेंगे तो राधा रानी की याद आपको आनी चाहिए और उनके चरणों में एक प्रार्थना अर्पित करके फिर आपको उठना है और दिनचर्या आरंभ करनी है। आप लोग कर सकते हैं, ये आसानी से कर सकते हैं, खाली संकल्प करना है आपको। सोने के पहले संकल्प करना है, सोने के पहले उनके चरणों में प्रणाम करके सोना है तो सुबह उठते ही आपको उनकी याद आएगी, फिर उनको प्रणाम करना है, फिर आपका आगे का काम शुरू करना है। क्योंकि वो रहस्य है, वो एक गुप्त रहस्य है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको भी आसान करने का तरीका है राधा रानी के चरणों में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करके। जब वो हमको स्वीकार कर लेगी, बहुत भोली है वो, बहुत ही भोली और नम्र है, और उनके अगर आप कहेंगे कि उनके हजारों गुण हैं तो उनका प्रधान गुण क्या है? एक है प्रेम, जो कृष्ण के प्रति सागर की तरह उमड़ता है उनके हृदय में। उनका जीवन, उनकी सांस, उनकी धड़कन, उनका हर एक जीवन का कर्ण जो है वो उनकी सेवा में है, कृष्ण भगवान की, उनके प्रेम के लिए है। और दूसरी प्रधान, प्रेम से भी, कृष्ण प्रेम से भी ऊपर एक चीज है उनके अंदर, वो है जीवों के प्रति करुणा। वो हमेशा प्रधान बनकर सामने आती है। जब भी किसी जीव पर करुणा करने का समय आता है तो राधा रानी ऐसी, उनकी करुणा जो है सागर की तरह अनंत लहरों के साथ उमड़ पड़ती है। तो ये करुणा का जो उनका आस्पेक्ट है, जो पहलू है, उसको हमको कनेक्ट करना है। और वो केवल एक ही है, रोरों को पुकारने से हमारा कनेक्शन हो सकता है। ऐसे राधा कुंड पे चल रही थी वो एक बार, तो चलते चलते पैर में कुछ लग गया उनके, तो सखियों को पूछा क्या है, तो सखियों ने कहा कि ये कल एक भेड़िया मादा जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका शरीर का आपका पैर का स्पर्श हो गया। तो राधा रानी ने उसको देखा और कहा ले लो उसके अपने पार्षद में ले लो। तो तुरंत वो मादा भेड़िया थी वो तुरंत गोपी बन गई और राधा रानी के अंतरंग संग में गोपी बनकर उनकी लीला शुरू हुई। आप सोच सकते हैं, अश्वत्थामा जैसे अत्यंत महान पाप, जघन्य पाप जिन्होंने किया, आज तक के पौराणिक इतिहास में कभी भी इतने भयंकर शाप श्री कृष्ण भगवान ने किसको दिए नहीं है। आपके सुनने भी आया होगा, आपने बचपन में सुना होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे वेदों में, पूरे कथाओं में, पुराणों में जितनी भी कथाएं हैं, कहीं भी कृष्ण भगवान ने किसी व्यक्ति को इतना भयंकर शाप दिया ऐसा कोई हुआ नहीं है। मतलब उसको पूरे इतने शाप दिए कि वो एकदम होपलेस हो गया कंप्लीटली, उसको कोई अभी जीवन में कोई चांस ही नहीं है। अरे अमरता का वरदान है तो मरना भी नहीं है, दर्द भी इतना होगा, खून भी इतना बहेगा, वेदना इतनी होगी कि मरना पसंद करेंगे, लेकिन कोई दवा नहीं चलेगी, दर्द बढ़ता रहेगा भयंकर और मरेंगे भी नहीं। वो व्यक्ति यहां पर आया जिसको ब्रह्मा जी ने गाइड किया कि अभी तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। शिव जी के पास भी गया, वहां पर बोले हरे कृष्णा। मतलब क्या करेंगे आपके लिए, आपने ऐसा जघन्य अपराध किया है और श्री कृष्ण भगवान स्वयं आपसे क्रुद्ध हैं और आपको इतने शाप दिया, हम क्या कर सकते हैं? हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा जी ने कहा एक आपको एक ही रास्ता दिख रहा है मुझे, एक हायर अथॉरिटी है उनसे भी ऊपर, वहां पर जाकर आप जरा एप्लीकेशन दे दो। तो यहां पर एक पास में गांव है पिपासावन, पिसाया कहते हैं लोकल लैंग्वेज में उसको, वहां पर आकर अश्वत्थामा पूरे पश्चाताप के साथ में रोए हैं और राधा रानी को पुकारा है उन्होंने। तो कुछ ही समय में राधा रानी प्रसन्न हो गई और जैसे ही प्रसन्न हो गई तुरंत वो जख्म जो है वो सूख गई, खून बहना बंद, दर्द समाप्त हो गया और राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया, अभी आप मेरे ही वन में रहो, यही निवास करो, ब्रजवास दिया उनको उन्होंने। ऐसे जघन्य पापी जिसको कृष्ण ने ठुकरा दिया है वो केवल राधा रानी की कृपा से ही बच गया, नहीं तो कोई चांस नहीं था उनका। आज भी वो इधर पिपासावन 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहीं पर निवास करते हैं और राधा ने उनको आदेश दिया कि ये मेरा बहुत ही प्रिय वन है। एक होती है प्यास और एक होती है पिपासा, पिपासा मतलब इंटेंस थर्स्ट। जब हम दोनों के बीच में उत्कट और अति उत्कट तीव्र मिलने की इच्छा होती है, पिपासा उत्पन्न होती है, तो हम इस वन में मिलते हैं और इस वन में हम राज करते हैं। और इस वन में राज जब करते हैं, कभी एक बार मुझे प्यास लगी थी तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पर कुंड खोदकर मुझे जल पिलाया था, वो श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। और जब एक बार उनको प्यास लगी थी तो मैंने कुंड खोदकर उनको जल दिया था, वो राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, वो गोवर्धन वाला नहीं, यहाँ पर अलग राधा कुंड श्याम कुंड है। तो ये कुंड में हम मिलते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं मिलन की, आप यही रहो और हमारे वन की रक्षा करो। दशरथमा अभी भी वहाँ ही निवास कर रहे हैं। इतनी कृपा कोई नहीं कर सकता है, इतनी अनंत कृपा। एक बार राधा रानी का एक भक्त है जो भंगी था, और वो राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर, वो बुहारी कहते हैं हम लोग जो बोलते हैं झाड़ू मारना, उसको अच्छी भाषा में बुहारी करना कहते हैं, बुहारी लिख लो आपको याद आएगा, कभी आगे बोलना है तो बुहारी बुहारी बोलना, क्योंकि बुहारी बोलेंगे तो आपको राधा रानी के धाम की याद आएगी, है ना। तो बुहारी कर रहा था वो सीढ़ियों की, इस भाव से कि यहाँ से राधा कृष्ण श्याम सुंदर जी ऊपर नीचे चलते हैं तो उनके पैरों में कोई कांटे कंकड़ कोई ऐसा कठिन वस्तु लगना नहीं चाहिए, उनके कोमल पैर है, मक्खन से भी अधिक मुलायम है। तो वो इस भाव से प्रेम से राधा राधा श्याम सुंदर जी का नाम पुकारते हुए, हे वृंदावन करते हुए आंखों में आंसू लेकर वो बुहारी कर रहे हैं, एक एक सीढ़ियों को साफ कर रहे हैं। इतना भाव उसका शुद्ध था, इतना प्रामाणिक था, इतना नम्रता उसके अंदर थी, एकाग्र होकर पूरा विश्व को पूरा भूलकर वो केवल वहां पर राधा रानी के चरणों का, कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए, उनको कोई कष्ट न हो वो सोचकर बुहारी कर रहे हैं। तो जैसे भी ये पेड़ है ना, इसमें कितनी शाखा है ना, समझो मैं यहाँ पर बुहारी कर रहा हूँ नीचे देखते हुए, तो ऊपर वो शाखा पर वो प्रकट हो गए कृष्ण और राधा रानी। आप विचार कीजिए, वो बैठे हैं वहाँ पर, हाँ ऐसे बैठे हैं और उनके चरण ऐसे नीचे हैं दोनों के, है ना, ऐसे बैठे हुए हैं। और राधा रानी कृष्ण को कह रही है, देखो कितना अच्छा भक्त है, कितने प्रेम से सेवा कर रहे हैं, क्या भाव है उसका, प्रकट हो इसका मतलब भाव ने उनको भा लिया ना, पूरा हृदय को आकर्षित कर लिया, इसलिए प्रकट हो गए, प्रकट क्यों होना उनको। तो राधा रानी कहती है, इतना सुंदर भक्त है ये, आपको भी धन्यवाद है कि आप भी आए। अभी मेरा ऐसा विचार है कि इसको ना कुछ उपहार दिया जाए, कुछ भेंट दी जाए उसको। तो कृष्ण कहते, जरूर जरूर, अगर आपकी इच्छा है तो जरूर, क्या चाहिए आप बताओ, क्या दे सकते हैं उनको। तो राधा रानी कहती है कि आपका जो अंगरखा है ना, वो नंद बाबा ने उनको पहनाया था, वो अंगरखा जो है वो उसको दे दो आप। तो कृष्ण कहते, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे बाबा का हरे रंग का अंगरखा है, नंद बाबा जो ना हरे रंग का अंगरखा पहनते हैं और विश्वानु महाराज जो है वो लाल रंग का अंगरखा पहनते हैं। तो कहते, नहीं नहीं नहीं, मेरे बाबा मुझे डांटेंगे, शाम को पूछेंगे अंगरखा कहाँ गया, तो मैं क्या बताऊंगा उनको। तो राधा रानी कहते, इतना क्या अटैचमेंट है आपका, दे दो ना उसको, ऐसा भक्त आपके सामने खड़ा है, वो जो इतना योग्य व्यक्ति है। तो नहीं 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 नहीं, हाना हाना, नहीं 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 नहीं। तो कहते, मत दो, जाओ मत दो, मैं मेरी शॉल दूंगी उसकी, मैं मेरी मैया को समझाऊंगी कि आपने मुझे शॉल पहनाई थी, मैंने उस भक्त को दे दी, कोई जरूरत नहीं आपके अंगरखा की। ऐसा कहकर राधा रानी ने अपनी शॉल उठाई, छोड़ दी ऊपर से, वो सीधे उस भंगी के ऊपर गिरी। जैसे ही वो गिरी ना, तो एकदम भंगी ऐसा कांपने लगा, ऐसा आनंद से कांप कांप के वहां पर बेहोश हो गया वो, राधे राधे पुकारते, वो उसको पता नहीं कहाँ से गिरी, वो क्या गिरा भी पता नहीं उसको। वो हमारे वृंदावन के जो एक एक ऐसे क्या कहते हैं उसको, ग्रेट मैड डिवोटी ऑफ वृंदावन, वो है प्रबोधानंद सरस्वती, जो रूप गोस्वामी के चाचा जी हैं। तो वो लिखते हैं वृंदावन महिमामृत में, वो एक और एक ग्रंथ है राधा सुधानिधि, उसमें उनका एक प्रथम श्लोक है जो राधा सुधानिधि ग्रंथ उससे आरंभ होता है, उसमें वो लिखते हैं कि जब भी ब्रज में हवा आती है ना, हवा जैसे जमुना किनारे से आती है, देखो हवा जो है ना वो बहुत ही सेवक भाव में यहाँ पर सेवा करते हैं, यहाँ पर जितने भी देवता है ना अपना बेस्ट सेवा देने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वायु है, इंद्र है, वरुण है, जिनका जो जो कंट्रोल है ना, वरुण का जैसे तालाब ऊपर कंट्रोल है, जलाशय का उनका नियंत्रण है, इंद्र का वर्षा पर नियंत्रण है, वायु का हवा पर नियंत्रण है। तो वायु देवता जो है वो यमुना जी के ऊपर जो बाष्प होता है ना, ऐसा बाष्प 4-5-10-15 फीट तक बाष्प होता है, और वो बाष्प में सबसे ज्यादा ठंडक और सबसे अधिक प्राणवायु होता है, तो वो बाष्प को लेकर वो हवा आती है ऐसे। और यमुना में बहुत सारे वो कुमुद कमल खिलते हैं, सहस्त्र दल वाले, उसकी पुकेसर जो है ना, वो उसके क्या पोलेंस, वो सुगंध और वो ठंडक लेकर वो मंद 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 तरीके से आती है और राधा रानी के वस्त्रों को छूता है वायु। तीन चीजें हैं वायु के अंदर, एक मंद मंद, एक शीतल और एक सुगंध। वो तीनों लेकर वायु आता है और राधा रानी के वस्त्रों को स्पर्श करके परावर्तित होकर वापस चला जाता है। आप सोच रहे हैं ना, समझ रहे हैं आपको, हवा आई, राधा रानी के उत्तरी वस्त्र को स्पर्श किया और परावर्तित होकर चली गई। तो वो परावर्तित हवा जो है, रिफ्लेक्टेड एयर, जो जिस दिशा में जा रही है उस दिशा को श्याम सुंदर जी प्रणाम करते हैं, हवा को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं जिस दिशा में से वो हवा लौट के आ रही है राधा रानी के वस्त्र को स्पर्श करके। वो राधा रानी का वस्त्र जिसकी दिशा को भी वो प्रणाम करते हैं, वो वस्त्र उस भंगी पर प्राप्त हुआ। सोच सकते हैं कितनी कृपा है इसमें। तो यहाँ की कृपा जो है ना, वो समझने की बड़े हैं। इतना ही समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर उसकी भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, बस इतना समझना जरूरी है। उसकी था और उसकी गहराई नहीं समझ सकते हम। तो ऐसी कृपा वाली, कृपा अधिष्ठात्री राधा रानी जो है, जिसकी कृपा के याचक श्री कृष्ण भी है, वो श्री कृष्ण यहाँ पर एक तो ब्रज में नंगे पैर घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है कि वो यहाँ पर सखी बनकर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सब लोग, जितने भी देवता है, वो सब सखी बनकर आते हैं, कोई पुरुषत्व लेकर यहाँ पर नहीं आता है। पुरुषत्व का मतलब क्या है? जरूर नहीं कि आपको शरीर त्याग करना है पुरुष का। पुरुषत्व का मतलब क्या है? कंट्रोल, पावर एंड कंट्रोल, ये पुरुषत्व का मूल स्वभाव है, जिससे अहम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आकर सभी देवता वो सखी बनकर वो प्रमाणित करते हैं कि हम ये अहंकार से नहीं आ रहे यहाँ पर। जैसे शिव जी देखो, यहाँ पर प्रियेश्वर महादेव का मंदिर है ना, तो वो यहाँ पर आए थे राधा रानी के बाल रूप का दर्शन करने के लिए, और राधा रानी ने यहाँ पर उनको दर्शन दिया है और आशीर्वाद दिया है कि यहीं पर निवास करो, इसलिए शिवजी महाराज यहाँ बरसाने में निवास कर रहे हैं। वही भाग कर आए थे रासलीला में प्रवेश करने के लिए, उनको कहा गया कि यहाँ तो एक ही पुरुष है, सब लोग ने यहाँ पर एंट्री नहीं है, क्या करना चाहिए, पूछते वो। हम लोग को अगर बता जाए कि आपको स्त्री बनना पड़ेगा, साड़ी पहन के आना पड़ेगा तो यात्रा में बरसाने में, तो आप लोग बोलेंगे बस खाली है पूरी, आज खाली, ओनली लेडीज वेलकम, है ना। हम लोग कितना सोचेंगे हमारी पत्नी क्या बोलेगी, हमारी बिरादरी के लोग क्या बोलेंगे, साथ में वाले क्या बोलेंगे, कितना विचार करेंगे। श्रीवा झट से बोला क्या करना है बताओ, तो ललिता ने बताया कि आपको मानसरोवर में स्नान करना पड़ेगा। सो मानसरोवर में छलांग लगा के गए वो, और झुटकी लगाई, तुरंत गोपी शरीर प्राप्त हुआ, वहां ही से भाग के आ गए। उनको भान भी नहीं कि ऊपर सांपों का क्या हुआ, नो कॉग्निजेंस ओनली, उसकी अनुभूति नहीं है। तो भाग के जब आए, सुंदर गोपी बन कर आए, तो ललिता विशाखा सब हंसने लगे उनको देखकर, बोले क्यों हंस रहे हो, देखे इतनी सुंदर युवती, उसके ऊपर हर जगह पर सांप, सर पे सांप, हाथ पे सांप, पैर पे सांप, सब गले में सांप। उनकी मतलब ये भावना देखकर प्रभावित हो गए बहुत, कि कितनी उत्सुकता है। कल मुझे माताजी पूछ रही थी कि, देवी माताजी पूछ रही थी कि शिवजी को क्या प्रार्थना करना चाहिए, कल वो थी ना सोमवती अमावस्या, तो हमने कहा कि उत्सुकता मांगो उनसे आप, लवल्य इगरनेस मांगो, क्योंकि वो कितनी उत्सुकता है उनके अंदर, कोई विचार नहीं है, कोई ऐसा इनिबिशन नहीं है उनके अंदर, अरे अभी क्या बोल रहे हैं और क्या करना है, कितना डिफिकल्ट काम है। इतना लवल्य होगा तो श्री कृष्ण की और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में कोई देरी नहीं है। प्रभु गोस्वामी कहते हैं लवल्यम बहुत जरूरी, आपने कल पूछा था ना कि शिव जी से क्या मांगना है, एक है इगरनेस लवल्यम। तो वैसे हमको यहाँ पर अपना जो अहम है, ऐसे नहीं कि अहम खाली पुरुषों को होता है, स्त्रियों को भी होता है, दोनों को अपना अहम छोड़ना चाहिए। वो छोड़कर इनके चरणों में जब गिरेंगे तो तुरंत अपनों आपको गले लगाएंगे। तो राधा रानी के धाम में कृष्ण जो परात्पर भगवान है, गौलोकेश्वर है, हाँ सब शक्ति उनके पास से आती है, शक्तिमान है वो स्वयं भी यहाँ पर स्त्री बनकर उनकी सेवा में आते हैं, उनको रहा नहीं जाता है नंदगांव में अधिक देर तक। फिर यहाँ भेष बदल बदल के आते हैं, मतलब स्त्री का ही भेष है, कभी फूल बेचने वाली बनकर आते हैं, कभी और कुछ बनकर आते हैं, कभी झाड़ू वाली बनकर आते हैं, कभी कुछ बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी साधु बनकर आते हैं, लेकिन रहते नहीं वो, उनको रहा नहीं जाता है उनसे, उनका अस्तित्व ही अधूरा है इनके बिना, इनके अस्तित्व से ही उनका अस्तित्व पूर्ण हो जाता है। उनके जीवन में जो परिपूर्णता है इनके अस्तित्व से, इनके संग से प्राप्त होती है। तो हम सब लोग मिलकर हाथ जोड़ के राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए। सब लोग मिलकर बोलेंगे, तप्त कांचन गौरांगी, प्रेम से और जोर से बोलो, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। हे राधे, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपके होना चाहते हैं, अपने शरीर मन बुद्धि आत्मा से हृदय से आपको शरणागत होना चाहते हैं। हम आपके होना चाहते हैं, हमें अपना बना लो। जितनी भी वासना और इच्छाएं भौतिक दुनिया के प्रति हमारे अंदर है, वो सब का नाश कर दो, केवल आपकी भक्ति ही बनी रहे, आपके चरणों की सेवा की आसक्ति बनी रहे, यही हमारा एकमात्र निवेदन है। तो जिस जगह पर हम बैठे हैं वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र स्थान है, जिसका नाम है पीली पोखर। उसका और एक नाम है प्रिया कुंड, क्योंकि राधा रानी को ये कुंड बहुत ज़्यादा प्रिय है। वैसे तो विश्वानु महाराज का कुंड है, राजा विश्वानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी हैं। माताजी का नाम कीर्तिदा देवी है। पिछले जन्मों में ये दोनों सुचंद्र और कलावती थे। कलावती तीन महासतियों में से एक हैं। एक महासती उन्होंने पार्वती को जन्म दिया, दूसरे महासती ने सीता को जन्म दिया, और तीसरे महासती ने कलावती ने कीर्तिदा देवी को जन्म दिया, जिसने राधा रानी को जन्म दिया। तो पिछले जन्म में सुचंद्र राजा और कलावती का विवाह हुआ। उन्होंने 12,000 वर्ष तप किया और उसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी प्रकट हो गए बड़े खुशी से, और ब्रह्मा ने कहा कि क्या चाहते हो। तो सुचंद्र महाराज ने कहा हमें मोक्ष दे दो। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो कीर्तिदा जो कलावती थी उनको क्रोध आया, उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए उनको मोक्ष कैसे दे सकते आप, हाउ कैन यू गिव मोक्ष टू माय हस्बैंड व्हेन आई एम स्टिल अलाइव। तो महासती के भय से ब्रह्मा भी कांप गए। हाँ, क्योंकि देखो महासती जो स्त्री की जो शक्ति होती ना वो उनके चरित्र में होती है। अगर कोई स्त्री पतिव्रता नारी है वही केवल काफी है उसके बल के कारण, बल के लिए। सबसे बड़ी शक्ति स्त्री की होती है पतिव्रत्य की, चेस्टिटी कहते हैं उसको। तो ब्रह्मा भी डरते हैं उसे महासती के बल से। महासती जब क्रोधित हो जाती है तो वो कहते हैं अरे माफ करना, मैं एक काम करता हूं, आप चिंता मत करना, आप है ना तब तक हमारे ब्रह्मलोक में रहना, और जब समय आएगा द्वापर में तभी भगवान की अंतरंगा शक्ति आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। ऐसा उनको डर डर के वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद में द्वापर के मतलब वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब तक जितना समय बीता, जितने कल्प बीते उतने समय तक उन्होंने अपने ब्रह्मालोक में उनको निवास दिया। और फिर वो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा के रूप में जन्म लिए। कीर्तिदा की माताजी का नाम है मुखारा देवी, पिताजी का नाम है इंदुसेन, और वो मुखारा ही गांव है यहाँ पर गोवर्धन के पास, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। किसका? कीर्तिदा देवी का। और कुंज भानु थे महागोप, उनके पुत्र हुए मही भानु, और मही भानु के जरा बच्चों को शांत करेंगे तो अच्छा रहेगा। मही भानु के पुत्र के रूप में 9 पुत्र हुए उनको। उसके बीच के पुत्र जो है वृषभानु महाराज, उनके बड़े 4 पुत्र और छोटे 4 पुत्र, ऐसे 9 पुत्र हुए और वृषभानु महाराज सूर्य के अवतार, और उनका विवाह जो है वो नंद महाराज के कहने से कीर्तिदा देवी से किया गया, मुखाराई से कीर्तिदा आई और यहाँ से विश्वभानु महाराज गए और उनका विवाह हुआ, और उनको प्रथम संतति प्राप्त हुई श्रीदामा, जो श्रीदामा को नारद मुनि ने वरदान दिया था कि आप कृष्ण के सबसे प्रिय गोप बनोगे, यू बिकम द मोस्ट डियर मोस्ट गोपा फ्रेंड ऑफ कृष्णा। उसके बाद राधा रानी का जन्म हुआ और उसके बाद अनंग मंजरी का जन्म हुआ। अनंग मंजरी बलराम जी का अवतार है। बलराम जी श्री कृष्ण और राधा रानी को श्रृंगार रस में सेवा करने के लिए अनंग मंजरी के रूप में जन्म लेते हैं। तो परिवार कैसा है? कीर्ति मैया, वृषभानु महाराज, श्रीदामा, राधा रानी और अनंग मंजरी, ऐसा ये परिवार है। और साथ साथ में उनके जो 8 भाई है, बड़े और 4 और छोटे 4, उन्होंने यहाँ के जैसे समझो बरसाना कमल है तो बीच कमल का जो हिस्सा होता है ना उसको वर्ल कहते हैं, जो बीच का हिस्सा होता है उसमें बरसाना स्थित है जिसमें राधा रानी निवास करती है, और उसके आसपास जो 8 गांव हैं उसमें एक एक भाई ने अपना अपना घर बसाया और उनको एक एक कन्या प्राप्त हुई, और वो कन्या जो है वो 8 कन्या होगी ना, वो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं। उनके नाम क्या है? ललिता, जो ऊंचे गांव से हैं, और विशाखा जो अंजनोक गांव से है। ललिता का गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, इस तरफ विशाखा का गांव है अंजनपुर, उसके आगे चित्रा सखी का गांव, जहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे जब बस पकड़ेंगे ना तो आपका बस जो है वो चित्रा सखी चिकसौली गांव में रहेगा, चिकित्सपुर संस्कृत नाम है उसका, और चित्रा देवी, चित्रा देवी का नाम गांव चिकसौली है, वो वहाँ पर ही हमारे महाराज ने 6 महीने तक निवास किया था। वो मान मंदिर भी उसी गाँव में है, चिकसौली, चित्रा सखी के गाँव में। चित्रा सखी की बड़ी कृपा है। और अगली देवी है तुंग देवी, तुंग विद्या, जो कमई नाम का गाँव है, यहाँ से कामना वन कहते हैं संस्कृत में उसको। उसके आगे है इंदुलेखा, इंदुलेखा जो है वो राकोली नाम के गांव से है, रंकपुर बन, और उसके आगे है रंग देवी सुदेवी, रंग देवी का गांव है डभारो, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, यहाँ से पहले बरसाना, उसके आगे चिकसोली, उसके आगे डभारो, वहां पर राधा रानी और कृष्ण भगवान गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। बहुत सुंदर गाँव है, बहुत ही सुंदर। और उसके आदमी लास्ट में जो गोपी है उसका नाम है सुदेवी, और सुदेवी सुनहरा गांव से हैं, स्वर्णबन उनके गांव का नाम है। यहाँ से आगे जाएंगे तो जब जब उच्चाग्राम आएगा, ऊंचा गांव, उसके आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो सुनहरा गांव आएगा। इस प्रकार से ये कमलाकार आकार में ये 8 गांव हैं जिसमें ये 8 सखियां रहती हैं, और वही कृष्ण की, राधा रानी की परम परम क्या कहते हैं उसको, परमेष्टि सखियां बन गई। तो ये पीली पोखर जो है ये वृषभानु महाराज का प्रिय कुंड है, यहाँ पर वो भी स्नान करते हैं। तो इसकी बहुत सारी लीला हैं, अभी समय कितना है उसके ऊपर हम लोग संक्षेप में सब कहते जाएंगे, लेकिन इस स्थान का महत्व जहाँ हम बैठे हैं वो तो हमको सुनना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में ऐसा है कि राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वर प्राप्त हुआ कि इसके हाथ से जो भोजन खाएगा वो रोग मुक्त हो जाएगा, वो सदा विजयी रहेगा, और उस भोजन को अमृत से भी अधिक स्वाद उत्पन्न होगा होगा उसके अंदर। ऐसे 3 वरदान दिए। क्या वरदान दिए? इस भोजन को, राधा रानी के बनाए हुए, इसके हाथ से बनाए हुए भोजन को अमृत से भी अधिक स्वाद होगा, जो खाएगा वो रोग मुक्त होगा और सदैव विजयी रहेगा, ऐसे 3 वरदान दिए। तो आप जानते हैं ना, अच्छा वरदान मिलेगा तो सबसे प्रिय राधा रानी को वरदान, सब ब्रज में उसकी खबर फैल गई, तो यशोदा नंद बाबा को भी मालूम पड़ी। तो यशोदा देवी सोच रही थी, अरे मेरे कान्हा के लिए इसके हाथ से बनाना चाहिए, रोग से मुक्त हो जाएगा, विजयी रहेगा और आनंदी भी हो जाएगा, स्वाद भी अमृत का चखेगा तो कितना अच्छा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो एक समारोह वहां पर हुआ, बड़ा समारोह हुआ, बहुत लंबी कहानी उसकी। उस समारोह में राधा रानी के माता को यशोदा मैया ने गुप्त रूप में एकांत में पूछा कि ये हो सकता है क्या, एक चांस लिया, वो किचन में गए, देखा राधा रानी उस महोत्सव में अकेली हजारों सखियों को हजारों चूल्हों पर एक साथ में अपने नियंत्रण में भोजन बना रही थी, वो सच अ स्मॉल गर्ल, तो और प्रभावित हो गए कि यस, इसका तो भोजन कृष्ण को मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने उनको मनाया और तुरंत उन्हें हाँ कह दिया, और उस दिन से यहाँ से वहां जाने का सिलसिला आरंभ हो गया। वहां पर नंदगांव में अपने घाट पर पावन सरोवर, मतलब नंद सरोवर था उसका पहला नाम था, उसके एक घाट पर यशोदा मैया स्नान करती थी, उसका नाम यशोदा घाट है। अपने घाट पर एक मीठे पानी का कुआं बनाया, वो आज भी वहां पर है, यशोदा कूप, जो राधा रानी के भोजन बनाने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया, किचन सेटअप किया उनके लिए। और रोज जाती थी राधा रानी, रोज आती थी, रोज आती थी, रोज आती थी। कभी कभी जब जा नहीं पाती थी तो कहते हैं कि कमरा भर के लड्डू बनाती थी वो, ताकि कम ना पड़े, जब चाहे तब खाने को। उसको कहते हैं बंटा भोग, बहुत विशेष होता है वो। उसको तुलसी लगाते नहीं, वो दिन रात लगते हैं भगवान के सामने, जब चाहे खा लो, थोड़ी देर में उठा लेते हैं, नया लड्डू रखते हैं। तो ऐसा रोज का आना जाना, ध्यायते विषया पुंसाम, है ना, अपनी प्रिय वस्तु को रोज देखना, रोज जाते हुए देखना, रोज आते हुए देखना, तो क्या होता है उससे आसक्ति बढ़ जाती है ना। जब अपने हम लोग अपने विषयों का ध्यान करते हैं, विषय के प्रति आसक्ति बढ़ती है। और ये तो दिव्य विषय है राधा रानी, इसके प्रति आसक्ति तो आत्म कल्याणकारी है, तो इनकी आसक्ति इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, एक दिन तो प्रेम से सब भाव विभोर हो जाती है। इसके गुणों को देखकर, इसके व्यवहार को देखकर, इसके सौंदर्य को देखकर ऐसा वात्सल्य जागृत होता है कि वो भाव विभोर होकर गले लगाती है और अश्रुओं की नदियां बहाती उसके ऊपर, स्नान कराती अपने अश्रु से। राधा रानी भी इतनी प्रसन्न हो जाती है उस प्रेम से, और झट से जाकर रसोई से हल्दी लेकर उसके हाथों को मल लेती है, क्योंकि ऐसी कोई चीज झट से नहीं होती है, बहुत दिनों तक उसका चिंतन किया उन्होंने कि ये लड़की अभी रोज का आना जाना कितना कष्ट की बात है, यहीं रह जाए तो कितना अच्छा होगा। ये चिंतन रोज चल रहा है कि इसके हाथ पीले कर दूं क्या, हाथ पीले कर दूं क्या, कर दूं क्या, कर दूं क्या। ये भाव में संकोच था पहले, अभी भाव के अंदर संकोच खत्म, तुरंत हल्दी लगा दिया और वापस गले लगा दिया। राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई, संकोच गई लज्जा से, इतने आनंद के मतलब फूले नहीं समाये सब लोग, ललिता विशाखा सब लोग इतने प्रसन्न हो गए कि अरे आज जो कुछ हुआ है वो इतना बढ़िया हुआ है कि इससे तुलना नहीं कर सकते हम लोग। तो सब वहां की सेवा समाप्त हो गई, तो वो जैसे कि आसमान में ही झूलते हुए आ रहे नंदगांव से बरसाने में, इतना आनंद था उनको। लेकिन जब बरसाने की सीमा में प्रवेश किया ना, तो जमीन पर आ गए। अरे क्या हुआ, हाथ पीले करके आ रहे हूं। मैया कहे कि ये संस्कार है क्या हमारे, बिना माता पिता के अपने आप ही पीले करके आना, ये हमारा संस्कार नहीं है। तो क्रोध करेंगे हमारे ऊपर, गुस्सा करेंगे, हमने यही सिखाया था कि आपको कहीं भी जाओ कुछ सेवा के लिए, वहां पर हाथ पीले करके लौट के आओ। ये आजकल की लड़कियां करती है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। आजकल तो विवाह करने की भी जरूरत नहीं है, सब चल जाता है एक के साथ में। तो एनीवे, तो वो संकोच करके यहाँ पर आई और वो ललिता को बताया, अभी क्या करें। तो ने कहा कि अरे सब समस्या, बड़ी समस्या, अभी कैसे करें। क्या होता है ना, जब भी समस्या होती है तो ललिता प्रधान है समस्याओं को समाधान करने के लिए। ये तो कोई बात नहीं, देखो ये पिताजी का कितना सुंदर कुंड है, यहाँ पर आप हाथ मल के साफ कर देना उसको, हम आपको मदद करेंगे। वो क्या कहते हैं ना, घिस घिस के उसका सारा जितना भी पीले कण है वो सब साफ कर देंगे, और किसी को नहीं बताएंगे। हमको केवल पता है, चार लोगों को पता है, किसी को पता नहीं है, हम किसी को नहीं बताएंगे। झट से आपके हाथ धो के आप घर चले जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे। तो ना अभी क्या कहें, इतनी सुंदर कथा है ये, इतनी लंबी कथा है। वो राधा रानी ना सोच रही है कि ऐसे हाथ मल रही है, देखो जल में ऐसे हाथ मल रही है, सखिया भी उनको हेल्प कर रही है, तो सोच रहे हैं कि मल दूं कि नहीं मल दूं। मतलब मल दूंगी तो ये जो एंगेजमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और मुझे अकेले में रहना पड़ेगा और आना जाना पड़ेगा। अगर नहीं मला तो शादी हो जाएगी, तो शादी होने के बाद फिर जो इंडिपेंडेंस था ना अपने आप रहने का, वो तो समाप्त हो जाएगा। रोज का आना जाना, छुपना छुपना, वो सब संकेत करना, सब कुछ बंद हो जाएगा और वहीं पर रहकर फिर संग होगा। तो संग की भी अभिलाषा है, लेकिन अपना जो स्वातंत्र है उसको भी खोने की इच्छा नहीं है। तो उस विचार में वो मलते जा रही है, मलते जा रही है, मलते जा रही है, और वो सब रंग निकल गया, फिर भी मल रही है, मल रही है, मल रही है, मल रही है। फिर सखियों ने जगाया उनको, अरे अभी हो गया, उठो अभी जाओ चलो। तो वो विचार में ही घर पर चली गई। अगले दिन सब लोग यहाँ पर आए, आते ना ब्रजवासी लोग स्नान धोने के लिए आते हैं, प्रातः विधि के लिए आते हैं। तो क्या देखते हैं, पूरा जल पीला हो गया है, स्वर्णमय हो गया है। अभी ब्रजवासी ना बहुत सीधे हृदय के होते हैं, बहुत सिंपल हार्टेड होते हैं। सीधे हृदय के लोगों को याद रखना इस बात को, जितने हम सीधे हृदय के हैं उतने आपको सब सत्य जो है ना वो हृदय में साक्षात्कार के रूप में प्रकट हो जाएगा। समझा आपको कुछ, तो मोर सिंपलर यू आर, द ट्रूथ विल बी रिवील्ड एज ट्रूथ इन द बॉटम ऑफ योर हार्ट एज रियलाइजेशन। और वो साधकी जो है साधना से उत्पन्न होती है, इच्छा से और साधना से उत्पन्न होती है। तो ब्रजवासी तो पूरे पूरे सादगी के ही अवतार हैं। आया देखा, हाँ रोज जाती है ना वहां पर, एक भाव भाव में आ गई होगी माता, और भाव में फिर हल्दी लगाई होगी और वो फिर वहां से यहाँ पर आके होंगे, आनंद से आए होंगे, यहाँ पर आके डर गए होंगे, फिर हाथ धोया होगा, फिर डर गए होंगे। अभी ये होगा, हो गया होगा, कर दिया होगा, मतलब क्या है, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, सब निकाल दिया, हो गया हो गया हो गया, समझ गया ना आपको। पहले कहानी लिखी एक एक लैंग्वेज में, फिर सब टेंस बदली कर दिया उसका, और क्या लिखा, वो उधर गई, बहुत दिन के बाद भाव एकदम विभोर हो गई, गले लगाया, हल्दी लगाया, वाग निश्चय कर दिया, कृष्ण के साथ विवाह होने वाला है, अरे बधाई हो बधाई हो, इधर ही बधाई होने लगी, चलो भाग गए, अभी चलो उनको बाबा को और मैया को बधाई दे के आते हैं, सब लोग गए, अरे सर ढेर सारे बरसाने के सब ब्रजवासी पहुंच गए ऊपर, अरे पुष्पानु बाबा कीर्ति मैया बधाई हो बधाई हो, सगाई की बधाई हो। अभी आप सोच सकते हैं उनकी क्या अवस्था होगी, दे डोंट नो एनीथिंग, तो वो क्या करेंगे, सब बधाई सुन रहे हैं, ऐसे मुड़ के राधा रानी की ओर देखते हैं, वो क्या करेगी, नीचे देखती मतलब सब कुछ जो कह रहे हैं वो सही है, क्या हुआ, तो फिर डर डर के उनको बोलती है, कैसे ऐसे हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो एकदम असहाय हो गई थी उस समय, लेकिन दिल में बहुत आनंद था उनके तो अभी उनको क्रोध आने के बदले में बहुत आनंद हो गया, क्योंकि दोनों के मन में जिगजिगाहट थी कि कौन पहले बात करे इस संबंध के प्रति। पूरे ब्रजवासी जितने भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, सब लोग के मन में एक ही विचार चल रहा है कि इन लोगों का सगाई विवाह कैसे हो जाए, लेकिन कौन शुरुआत करेगा, दोनों को संकोच है, दिल में सबकी बातें है, लेकिन कौन बोलेगा उसके लिए। तो वो उनको लगा कि आज उन्हीं की तरफ से ये बात हो गई है तो हमें मंजूर है, हरि बोल। तो फिर वो आगे बहुत लंबी कहानी है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ उसको। तो फिर ये जो कुंड है, इस पर दूसरे समय पर राधा रानी ने मेहंदी के हाथ भी धोए हुए हैं और अनंत बार स्नान भी किया हुआ है और हल्दी के हाथ भी धोए हैं, इसलिए ये जल जो है वो पीला है। फिर उसके कुछ दिन के बाद में कृष्ण भगवान यहाँ पर आते हैं, वो उनको ना रहा नहीं जाता है, इसलिए वो आ जाते हैं और देखते हैं, अरे ये तो कुंड तो स्फटिक स्वच्छ था, पीला कैसे हो गया। तो ऐसे वो अपने आप से पूछने लगे, ये पीला रंग क्या है, ये पीला रंग क्या है, बोलो सब लोग बोलो, ये पीला रंग क्या है, ये पीला रंग क्या है, ये पीला रंग क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। तो वैसे भाव विभोर होकर ऐसे जल में उतर गए वो, वैसे अपने आप को पूछते हुए उनकी आवाज गूंजने लगी पूरे वातावरण में और वो जल में प्रवेश कर गए। उनकी आवाज सुनकर ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, वो पुकारते पुकारते जल में चले गए, जल में चले गए, छोटे से बालक है ना। तो कुछ समय के बाद ना दो हाथ ऐसे और एक मोर पंख, ये तीन ही चीज जल के ऊपर है और पूरे कुंड में ऐसे तीनों चीज घूम रही है और आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है। उसके बाद बाहर आते हैं, जब बाहर आते हैं ना पूरे स्वर्णमय हो जाते हैं, खुद पीले हो जाते हैं और फिर भी पूछ रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। सखा लोग भी आ गए, बोले क्या हो गया कृष्ण को आज, श्याम सुंदर क्या हो गया, बोलते कृष्ण से मिलना है मुझे। क्या श्याम सुंदर कहाँ है, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है। सो बाल बाल तो हैरान हो गए, कृष्ण बावड़ा है गो पागल हो गया कृष्ण, क्या हो गया कि जल में क्या है, इसमें क्या हो गया, क्या सब लोग देख रहे हैं, सखा भी देख रहे हैं। कहते हैं उनको कई घंटे लगे, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ है, हे मधुमंगल, हे उज्जवल, हे अर्जुन, मुझे श्याम सुंदर से मिला देना। मतलब क्या हुआ कि इसमें स्नान करने से वो राधा भाव को स्वीकार कर गए, राधा ही बन गए और राधा ही बनकर पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ है। अभी आप देखो ग्वाल बालों का कितना मुश्किल हो गया उनको, मतलब क्या करें, अभी कैसे समझाएं इसको, किस डॉक्टर को दिखाएं, क्या हो गया इसको, पूरा आइडेंटिटी चेंज हो गया। बहुत देर के बाद उनको ग्वाल बालों ने उनको घुमा घुमा कर समझा समझा कर फिर वो होश में आए। तो हमारे जो हिज होलीनेस बरसाना स्वामी है ना, न्यू वृंदावन वाले, उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया कि मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आने वाला हूँ, सबसे पहले। उसके बाद में वहाँ पर किया इमली तला पे, और उसके बाद में आठ जगह पर उन्होंने ये प्रकट किया इच्छा कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन ये गुप्त रूप में किया, ये रहस्यमय रूप में किया। तो इस तरह से ये जो पीली वस्तु, उसका उत्तर नहीं पूछा आपने ये जो पीली वस्तु है ये राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिससे आवृत तो होने पर वो पूरे पागल हो गए, अपने होश को खो बैठे, अपने अस्तित्व को खो बैठे, अपने कोर कोर एग्जिस्टेंस उसको भी भूल गए वो। तो ये जगह जो है ना वो अपने सबको अपने आप को भूल जाने की जगह है। जब कृष्ण यहाँ पर अपने आप को भूल जाते हैं, हमको भी अपने आप को भूल जाना है, सब कुछ भूल कर यहाँ पर राधा रानी को पुकारना है। जय जय श्री राधे। सब कुछ भूल जाओ कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, सब कुछ भूल जाओ और पुकारो जय जय श्री राधे। उसके बाद में ये जगह होली लीला का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। देखो जो होली होली हम कहते हैं ना, उसका उगम बरसाने से हुआ है। पूरे विश्व में भी हम लोग उसका विकृत स्वरूप देखते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो होली है वो केवल प्रेम का उत्सव है। प्रेम को रंगों के माध्यम से प्रकट करने का उत्सव है, वो भी किसे शीतलता, कोमलता, मृदुता, नम्रता और प्रेम के साथ में दूसरों का प्रेम जो है अर्पण करना है रंगों के माध्यम से। वो गीली होली होती है जिसमें पानी मिलाकर पिचकारी से करते हैं, और सूखी होली होती है वो गुलाल, अबीर, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर द्रव्य होते हैं। जो ओरिजिनल होली है उसमें अभी भी वो पत्ते मिलते हैं, और वो पत्ते उसको उबालते हैं और वो गुनगुने स्वरूप में पिचकारी से उसको लगाते हैं, तभी हमारी त्वचा जो है ना वो खिल जाती है। तो होली का उत्सव जो है अपने पूरे अस्तित्व को खिलाने के लिए है, वो ऑयल पेंट लगाकर पूरा नष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, वो उस द्रव्य में इतनी शक्ति है कि जब वो गुनगुने स्वरूप में हमारे ऊपर चलाई जाती है तो त्वचा खिल जाती है, चेहरा भी खिल जाता है। तो वो महान होली का उत्सव जो है, जो जैसे रासलीला है वैसे होली का उत्सव प्रेम के आदान प्रदान का सर्वोच्च उत्सव है, जो श्री कृष्ण भगवान और गोपियां और ग्वाल बाल सब मिलकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, कोई हानि नहीं करते उसमें, प्रेम को बढ़ाते हैं उससे। तो उस होली का जो उगम है, शुरुआत है इस जगह से हुई है, पीली पुकार से। कैसे हुई है? जैसे होली कब होती है बताइए? फाल्गुन महीने के नवमी को होती है। हाँ, हमारे यहाँ तो पूर्णिमा में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बसंत पंचमी में होली का आरंभ होता है और 45 दिन होली चलती है। 45 डेज की होली होती है। बसंत पंचमी के दिन से रंग उड़ना शुरू होता है और उसके बाद में फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में 5 दिन तक होली चलती रहती है। वो बलराम जी की, फिर यहाँ की लट्ठामार, वहाँ की लट्ठामार, वहाँ का होरंगा, यहाँ का होरंगा, ऐसे करते करते बटेन की होली, इधर की होली, ऐसे करते करते पंचमी में फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के पंचमी तक होली चलती है, 45 डेज। लेकिन नवमी जो है फाल्गुन शुद्ध पक्ष की नवमी, उसको कहते हैं रंगीली होली। यहाँ पर एक रंगीली गली भी है, वहाँ पर वो होली खेलते हैं। तो उस दिन अष्टमी के पहले दिन यानी नहीं नवमी के पहले दिन यानी अष्टमी के दिन यहाँ पर नंदगांव की तरफ से कृष्ण भगवान की तरफ से एक ब्राह्मण आता है, इसका नाम पांडे है। तो पांडे यहाँ के आते हैं होली का निमंत्रण लेकर गोपियों को देने के लिए। तो वो भी एक बहुत लंबी कहानी है, नहीं तो छोड़ दो उसको। वहां से वो आते हैं, उसके प्रोसेशन में सारे देवता सम्मिलित हो जाते हैं। सुखदेव जी, नारद जी, माया देवी पुतना का स्वरूप लेके आती है, ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, जितने भी बड़े बड़े देवता है सब लोग भेष बदल कर स्वांग लेकर, मतलब पहचान में नहीं आना चाहिए ना, लेकिन वो उस जुलूस को मिस नहीं करना चाहते हैं। कैन वी प्लीज हैव चिल्ड्रेन साइलेंट। तो ऐसा भी वर्णन आया है कि ब्रह्माणी ने एक बार ब्रह्मा से झगड़ा किया। क्या झगड़ा किया? कि आप तो भाव में जले जाते हो और हमको भूल जाते हो, क्योंकि उस समय ब्रह्मा अकेले गए थे भेष बदलकर उस जुलूस में, और बाद में जाके घर में जाके समझाया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, तो घर में क्या बोलेंगे, लड्डू खिलाएंगे आपको? बोले अकेले जाके जाते हो, हमको नहीं बुलाते हो। तो ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, शिव जी 5 मुख वाले, सुखदेव जी नग्न बालक, नारद मुनि उनको गोद में लेके चल रहे हैं, और ग्वाल बाल बोल रहे हैं देखो 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 ये 4 मुख वाला, इसकी बीवी कौन से मुख से बात करेगी? और भी कुछ कहा है बोलू क्या आपको? तो ग्वाल बाल कहते हैं कि अगर चुम्मा लेना तो कौन से मुख से लेंगे? ऐसे वो शिव जी का ब्रह्मा जी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमको पता नहीं है। इंद्र जो इंद्र भी आए वो क्या कहते हैं ऐसे ना, अपने गाल फुला फुला के एक अद्भुत आवाज निकाल रहे हैं, इक्विपमेंट टाइप ऐसा कोई होता ना ऐसा वो फनी साउंड निकालने वाला, तो अपने मुख से ही वो साउंड निकाल रहे हैं, ग्वाल बाल तालियां बजा के हंसा रहे हैं। इंद्र इतने देवेंद्र इंद्र है, वो ग्वाल बालों को ऐसे गोल गाल फुगा के हवा निकाल कर मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे दिव्य जुलूस से ये जुलूस वो आने वाला है, लेकिन पांडे पहले पहुंचता है और वो न्योता देने के लिए जब आता है तभी सब सखियां यहाँ पर होती, राजा रानी महल में होती, पता नहीं किस कारण से रूठी हुई है, यहाँ से भी दिखता है महल राजा रानी का, तो अंदर रूठी हुई है, ललिता उनको मना रही है और विशाखा यहाँ पर है और बाकी सखियां हैं। तो पांडे जी सब लोग आते हैं, राजा रानी नहीं आई, सब सखियां आकर उस पांडे को धो देते हैं रंग से। बेचारा पांडे तो कल निमंत्रण करने के लिए आया था, थोड़ी होली खेलने आया था, तो ब्राह्मण है बेचारा, वो तो थोड़ी एग्रेसिव तो है नहीं वो। तो उसके बाद राधा रानी आती है, वो तो देखती है कि सारी लड़कियां मिलकर एक बेचारे पांडे को, गरीब पांडे को इतना सता रही है, तो दयालु करुणामय राधा रानी सबको अलग कर देती है और पांडे को वहां से निकाल देती है। वो क्षमा मांगते कि आप ब्राह्मण देवता माफ करना, हमारी लड़कियां बहुत तेज है जरा सा ज्यादा गुस्सा मत करना। घर पे ले जाती उनको और उनके गीले कपड़े निकाल कर उनको गर्म नए कपड़े देती है, गर्म पानी सुगंधित जल से उनका स्नान की व्यवस्था करती है, नए वस्त्र देती है, राज वस्त्र, दक्षिणा देती है, आरती पूजन करती है, भोग लगाती है उनको, और फिर कहती है कि पालकी में बैठकर उनको वापस पहुंचाया जाए। तो पांडे जी फिर बेचारे बच गए राधा रानी की कृपा से, बचाते हैं। अगले दिन ये मैंने बताया ना सब जुलूस निकलता है वहां से, तो कृष्ण बलराम सब अपने होली का वेश धारण करके आते हैं, सब सखा जो है वो ढाल धारण करते हैं, सब यहाँ पर होता ना वो होता ना सोल्जर लोग कैसे होते हैं, इधर गन इधर हैंड ग्रेनेड इधर मशीन गन इधर बुलेट इधर ये सब पट्टा सब होता है ना पूरा फुल्ली इक्विप्ड, वैसे ही ये पूरा सुखा रंग रंगा रंग नया वही पिचकारी छोटी पिचकारी सब जगह बांध के पूरा ऊपर ढाल पहन के, वो ढाल बलराम जी का रूप है, उसको पहन के सब लोग आते हैं यहाँ पहुँचते हैं। सब स्वांग लेने वाले लोग भी पहुँच जाते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं अपना काम छोड़कर छुट्टी लेकर आए देखने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो तभी जब राजा रानी रूठी हुई है किसी कारण से और यहाँ पर कृष्ण आए हैं नायक बनकर, विशाखा को नैनों से पूछते क्या हुआ, तो कहते नहीं आए वो रूठी हुई है, बोले जाओ जाओ उसको लेके आओ, सब नजरों से बोल रहे। तो विशाखा भागती है ऊपर, ललिता वहां मना रही है, विशाखा पहुंचती है, अरे तुम अभी तक बैठी हो रूठी हुई, अरे वो आ गए होली खेलने के लिए, अभी रूठने का समय नहीं है, अभी सजने का समय है, आओ आओ अगर विश्वास नहीं तो बाहर जाके देखो। तो कृष्ण यहाँ खड़े हैं, वो झरोखे में दर्शन करने के लालायित हैं, तो दर्शन तो हो जाए, तो बहुत धक्का मार के उनको झरोखे में लेके आती है, झरोखे में राधा रानी कृष्ण का दर्शन करती है, यहाँ से यहाँ आप जहाँ बैठे वहां से देखो आप पीछे राधा रानी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से आज भी दिखाई पड़ रहा है, ये पौराणिक सत्य है, कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है। तो जैसे ही राधा रानी बाहर आती है यहाँ से पिचकारी निकाल कर पूरा रंग लगा देते हैं उनको सब पूरा, लेकिन पिचकारी में इतना जोर नहीं था कि वहां तक पहुंचे तो आधे में गिर जाती है, लेकिन उनका प्रेम भरा जो न्योता है वो यहां से वहां पहुंच जाता है। तो तुरंत उसको देखकर प्रेरणा प्राप्त कर राधा रानी को झटपट सजा देता श्रृंगार करते उनका और लेके आते हैं, यहाँ से ग्वाल बाल सज सज कर खड़े हैं, वहां से राजा रानी आते श्रृंगार करके मिलते हैं, बातें करते हैं कि चलो आप होली खेलेंगे, तो होली का आरंभ होता है, नियम बता देते हैं कि पहले सूखी खेलेंगे बाद में गीली खेलेंगे, उसका क्या नियम है उसका क्या नियम है, सब तय करके होलिका के आरंभ होता है। और सूखे होली के खेल में इतना आनंद आता है कि यहाँ पर पूरा बादल छा जाता है, सब देवताएं आकाश में देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं होली का, लेकिन सूखे होली में खेलते 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 कृष्ण की पार्टी हारना आरंभ हो जाता है। जैसे हारना होता है तो वो चालाकी करते हैं, सूखी होली खेल रहे हैं अभी गीले होली का कुछ काम नहीं है, लेकिन सूखी होली में हारने के लिए हार रहे, इसलिए पिचकारी निकाल के तुरंत राधा रानी को मार देते हैं। तो राधा रानी भी झट से समझ जाती है कि अरे ये चालाकी कर रहे हैं बदमाशी कर रहे हैं, तो अपना हाथ अपने मुख पर रोक देते हैं, लेकिन वो जो पिचकारी का जो लाल रंग का जो द्रव है वो हाथ को लगकर ऐसे परावर्तित होकर गाल पर गिर जाते हैं। समझ में आया, ऐसे हाथ से मैंने रोका है लेकिन इतना तेजी से आ रहा है वो पिचकारी का द्रव्य कि हाथों को लगकर कुछ बिंदु ऐसे गाल पर आ गए हैं, और गाल उनके जो स्वर्ण कांति वाले गाल हैं उनके ऊपर वो लाल रंग के जो बिंदु है वो गिर रहे हैं। तो ये देखकर जो पिचकारी मारने वाले हैं वो भावी पर हो जाते हैं, पिचकारी निचर के देखते रह जा, लेकिन राजा रानी को बहुत गुस्सा आता है कि इसने गेम में नियम तोड़ दिया। एकदम होली रुक जाती है और वो भाव विभोर होकर खड़े हैं, उनको जाके सब लोग अरेस्ट कर लेते हैं, खेल रुक जाता है क्योंकि इसने बदमाशी की है। और उसको अरेस्ट करके हाथ उसके पीछे मोड़ कर ऐसे सामने लेके आते हैं। अभी तो गुनाह तो हो गया, अभी क्या करना है, गुनाह का तो मुकदमा चलाना पड़ेगा। तो मुकदमा कौन चलाती है, ललिता देवी। मुकदमा उनके पास पहुंचता है, क्या किया जाए इसका, मतलब होली का नियम तोड़कर इसने भंग कर दिया है, चालाक किया, बदमाशी किया, इसको दंड देना चाहिए। तो ललिता कहते क्या दंड देना चाहिए, दंड ये देना चाहिए कि दोनों हाथ से इसके मुंह को काजल से काला करना चाहिए। सबसे बड़ा अपमान मानते हैं होली में काजल लगाना, और काजल से लगाना मतलब ग्रेट इंसल्ट। और उसके बाद उसका जो दुपट्टा है, मैंने आज पहना नहीं है, लेकिन दुपट्टा जो है ना वो पुरुष का बहुत बड़ा सम्मान की वस्तु होती है, उसका दुपट्टा छीन लेंगे। और तीसरा उसका दंड देंगे, उसके पीठ पर एक गाली लिखेंगे जो मैं यहां नहीं कह सकता, धक्का मार के भेज देंगे उसको। तो तय होता है कि चलो ये सजा देनी है उसको। तो सभी सखियां उसका हाथ कस के ऐसा मोड़ के राधा रानी को काजल लेके जाते हैं, बोले हाथ डुबा दो उसके अंदर। आमतौर पर कैसा करते हैं ऐसा, ये उंगली से, ये बहुत पवित्र उंगली होती है, उसको लगाकर फिर ऐसा धीरे से ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसा नहीं 10 उंगलियां पूरा डुबाना है उसे, ऐसे लगाना है पूरा। तो डुबा कर वो राधा रानी के सामने लेके आते हैं, तो कृष्ण अपना झट से गाल हटा देते हैं। तो फिर राधा रानी और गोपियां मिलकर उनके मुंह को ऐसा पकड़ते हैं और फिर काजल लगा देते हैं। दूसरी गोपी आती है और उसका खेस खींच लेती है, और तीसरी गोपी आके गाली लिख देती है और धक्का मार के उनको भेज देती है। उसी समय श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों पर गिर जाते हैं और तुरंत उसको उपहार देते हैं। उसको कहते हैं फगुआ। फगुआ यानी जो होली के खेल में हार जाते हैं उनको, जीतने वालों को फगुआ देना पड़ता है। फगुआ यानी उसमें अंगूठियां भी होती है, रत्न जड़ित अंगूठियां होती है, गले का हार होते हैं, कमर काचनी होते हैं, वस्त्र होते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें होती है। तो हमारे भगवान जो है कन्हैया जी, वो वहां से ट्रंक भर के, बहुत सारे ट्रंक भर के फगुआ लेकर ही आ रहे थे। क्यों बताओ, हारने वाले नहीं, हारने के लिए ही आते हैं वो यहाँ पर। उनको जीतना, उनके लिए जीतना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो तैयारी से आते हैं कि हमको हारना है और सबको फगुआ बांटना है। तो सभी ग्वाल बाल जो है सभी गोपियों को फगुआ बांटते हैं। तो होली के उत्सव का रहस्य यही है, हारना। भगवान अपने भक्तों के सामने हारने के लिए आते हैं। तो उसके बाद में तो होली हो गई, उसके बाद में यहाँ पर अभी भी आज भी यहाँ पर होली का उत्सव होता है। मैंने एक बात बीच में बताना भूल गया आपको, जब वो पांडे ऊपर जाते हैं तो पांडे को देखकर कीर्ति मैया बहुत खुश हो जाती है, अरे नंदगांव से ब्राह्मण न्योता लेकर आया, निमंत्रण लेकर आया है। तो वो जब भी उसका स्नान होता है, उसको नए वस्त्र मिलते हैं, भोजन होता है, भोग लगाते हैं, तो कीर्ति मैया अपने हाथ से प्रेम से उसके मुँह में लड्डू भरती है। तो उसको लड्डू मार होली कहते हैं। क्यों, उस समय तो कीर्ति मैया ने प्रेम से लड्डू खिलाया था, लेकिन आज वो क्या करते हैं, साहब जैसे लोग हैं ना, वो जाके मंदिर में लड्डू स्पॉन्सर करके भेज देते हैं उनको, और फिर वो लड्डू नंदगांव से आने वाले लोग जो आज भी आते हैं ना वहाँ से, उसी पांडिलीला भी होती है और जुलूस में भी आते हैं, सब लोग सज धज के आते हैं, तो उन पर ऊपर जाकर वो राधा रानी को पुकारते हैं, होली के लिए बुलाते हैं। तो जब उस समय मंदिर के अंदर से गर्भगृह से लड्डू फेंका जाता है उनके ऊपर, वो सब लोग उसको कैच करते हैं, उसको महाप्रसाद के रूप में मानते हैं। तो उसको श्री जी के मंदिर में दान देना भी और लड्डू को पकड़ना भी, दोनों बड़ी एक्टिविटी होती है उस समय, अष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है, और लोग बड़े बड़े लोग भी लड्डू स्पॉन्सर करते हैं, उसके बाद में बच्चों की तरह जाकर लड्डू कैच करते हैं और जेब में भर के बोलते मैंने इतने लड्डू के टके आज, तो उसको लड्डू मार होली कहते हैं। और अगले दिन लट्ठा मार होली होती है, अभी वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा विषय है, कभी और बताएंगे आपको। और एक लीला यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को डोंगी लीला होती है, यानी कि नौका विहार होता है। राधा रानी कृष्ण के विग्रहों को यहाँ पर जल में विहार करते हैं बहुत सुंदरता से। तो ये भगवान का, राधा रानी का गोपियों के साथ में नौका विहार का भी स्थान है। यहाँ पर राधा कृष्ण साथ में, राधा अपने सखियों के साथ में, सब लोग यहाँ पर नहाते हैं, जल विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, जल केली करते हैं। एक दिन यहाँ पर जब राधा रानी बहुत छोटी सी थी तो नारद मुनि आए, और नारद मुनि दर्शन करने आए थे। तब थोड़ी राधा रानी थोड़ी रेंगते हुए, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, थोड़ी सी थी लेकिन चल सकती थी, तो यहाँ पर सखियों के साथ खेल रही थी। तो नारद मुनि आए ऐसे, मतलब देखो समझो कोई भूखा व्यक्ति है तो वो भोजन को कैसे देखेगा, somebody is so hungry to see Radha Rani, अगर उसके मन में राधा रानी को देखने के लिए इतनी लालायित भाव है तो कैसे देखेगा वो कि राधा रानी दिख रही मुझे अभी, तो ऐसे वो घूर घूर कर उसको देख रहे थे। हम लोग तो कहते हैं घूर घूर, लेकिन वो ऐसे बड़े चाव से देख रहे थे उनको, बड़े प्रेम से देख रहे थे। तो राधा रानी के हाथ में कुछ मेवा थे नहीं, जैसे कि काजू बादाम पिस्ता ऐसे, तो उन्होंने उनको दे दिए। जब राधा रानी के कर कमलों से वो मेवा उनको प्राप्त हो गए, तो उनको जब ग्रहण किया तो नारद मुनि भाव विभोर हो गए, एकदम प्रेम से विवल हो गए और उसको और प्रेम से घूर घूर कर देखने लगे। तो राधा रानी सखिया उनको देखकर डर गई, अरे कौन सो बाबा आ गए, आ गए कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। और सब लोग भाग गए और बाबा उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो लालायित इतने भाव विभोर हो गए उनको देखकर, उनके पीछे पीछे आ गए। पता नहीं लड़की भाग क्यों रही है, मैं दर्शन करने के लिए आया था। तो वो अपने महल में पहुंचती है और मैया बाबा को कहती है, बाबा आयो है, बहुत भयंकर बाबा घूर घूर देख रहे हैं। तो कीर्ति मैया कहती है, अरे वो तो नारद मुनि है, जब तेरा जन्म हुआ था तो गंडा बांधने के लिए आए थे, वो वही है, वे बड़ी कृपालु है, इनकी कृपा से ही तुम्हारी आंख खुली थी। तो फिर राधा रानी तब तक अपने मैया के गोद में जाकर स्तनपान करती है और फिर वो उनके गोद में खड़े होकर उनको देख रही है, मतलब एक्चुअली आशीर्वाद दे रही है, लेकिन बाह्य दृष्टि से क्या लग रहा है कि अभी डरी हुई थी और माँ के गोद में गई और माँ के गोद में जाकर सुरक्षित स्थान प्राप्त करने के बाद में उसको देख रही है। और नारद मुनि वहां पर बार बार झुक झुक कर गिर गिर कर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो भी लीला यहीं पर हुई थी पीली पोखर पे। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर स्थान है और अपने पास समय अभी समाप्त हो चुका है। एनीवे आपको खाली एक लिस्ट बता देंगे यहाँ पर क्या क्या स्थान है। एक यहाँ पर स्थान मैंने बताया भानुखर, जो वृषभानु महाराज का कुंड है, जहाँ पर राधा रानी भी स्नान करती है, वहाँ पर कृष्ण का उनका एक बार मिलन हुआ था। फिर ब्रजेश्वर महादेव है, जहाँ पर वृषभानु महाराज ने तपस्या की थी। और ऊपर श्री जी का मंदिर है भानुगढ़, उसके आगे दानगढ़, उसके आगे विलासगढ़, उसके आगे मान मंदिर मानगढ़, ऐसे चार गढ़ है। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था और पर्वत रूप में यहाँ विराजमान हो गए थे। लास्ट में जब आप उतरेंगे तो गहवर कुंड है, राधा सरोवर, वो ब्रह्मा जी की नाभि है। बीच में दान बिहारी में भगवान जाकर दान मांगते हैं रति प्रेम का राधा रानी से। यहाँ से लेकर उधर तक जहाँ पर आप उतरेंगे वहाँ तक एक वन है, गहवर वन, तो राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया था। और गहवर वन के अंदर गहवर कुंड है और बचपन में राधा रानी वहाँ पर बड़े पेड़ों का बेलों के साथ विवाह करती थी खेल खेल में। उसके आगे दोहिनी कुंड है, जहाँ पर वृषभानु महाराज दूध निकालते थे अपने गायों का। बिहार कुंड है, जहाँ पर शिवजी महाराज गोपी बनने के लिए आए थे और गौरी जी ने उनको गोपी बनाकर राधा रानी को पुकारने के लिए भेजा था। एक तो बता दें आपको कम से कम, जब आप ऊपर जाएंगे ना यहाँ से, तो आपको जाते ही पहले कामधेनु का दर्शन करना है। कामधेनु के चार थानों का दर्शन वहाँ पर है सबसे पहले। उसके बाद आएगा राधा रानी के चरण चरण स्थली, चरण स्पर्श, चरण चिन्ह वहाँ पर हैं, जहाँ पर राधा रानी का विग्रह प्रकट हुआ था पर्वत से। अभी बता नहीं पाया आपको मैं, तो वो चरण चिन्ह का स्थान जो है वो दर्शन करना। उसके ऊपर ब्रह्मा जी का मंदिर है, उनको प्रणाम करना। यहाँ से जाने के पहले ही ब्रह्मा जी को प्रणाम करना, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के वो प्रथम आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के भी प्रथम आचार्य हैं। उनके शरीर पर चलकर हम ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन ये कामना करना कि हम कुछ भी वहाँ पर इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, केवल श्री जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा करना और फिर चले जाना। उसके बाद में ब्रह्मा मंदिर देखने के बाद में एक छतरी है वहाँ पर, उस छतरी संगमरमर की छतरी है मार्बल, उसमें हरियाली तीज, राधाष्टमी और होली, इस तीन दिन राधा रानी का विग्रह नीचे आ जाता है। और हर साल के हर दिन तक पुरुष गोस्वामी जी उनकी पूजा करते हैं, उसको आरती कहते हैं। लेकिन जब तीन दिन वो नीचे आती है तो गोस्वामी की लड़कियां उनकी पूजा करते हैं, उसको आरता कहते हैं, और उसके बाद ही वापस चले जाते हैं। फिर पीछे जाएंगे मंदिर के, तो वहाँ पर राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, जहाँ पर खड़े होकर नंदगांव की ओर खड़े होकर वो कृष्ण को इशारा किया करती थी, और उस भाव से वो वहाँ कर का पत्थर पिघल गया था और चरण चिन्ह निर्माण हो गए थे, वो मंदिर के पीछे हैं। और एक प्रियाशरण जी बाबा महाराज थे, उनकी प्रेरणा से उस मंदिर का हरगुलाल सेठ ने उसका जीर्णोद्धार किया है, जो आप देख रहे हैं, उनकी कृपा से मंदिर आज विराजमान है। आप लोगों का भाग्य है कि आप दर्शन कर सकते हैं। एक मंत्र पुकारेंगे और पीली पोखर का मंत्र है वो, और फिर हमारा कथा समाप्त करेंगे। जग मुहु पीत सुपुष्कर, जग मुहु पीत सुपुष्कर, मत्र च निष्णातम उद्वर्त्य स्वामिन्या कृष्णेना प्रेम तड़ागे कृता प्रीति। ये पहली पोखर का मंत्र है जो श्री वल्लभ दिग्विजय नाम के ग्रंथ में दिया गया। ऐसे हर एक स्थान के प्रणाम मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि पीत सुपुष्कर, ये बहुत ही सुंदर पीले रंग का पुष्कर यानी जलाशय है, और स्वामिन्या यानी राधा रानी स्वामिनी और कृष्ण इनकी उत्कट प्रेम का स्थान है, और हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो प्रीति प्राप्त हो उनके चरणों के लिए। हम पीली पोखर धाम को प्रणाम करते हैं ताकि ये जो स्वामिनी और कृष्ण के बीच में प्रीति है उसके हम सेवक बन जाए, उस प्रीति को हम प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके ग्रुप का नाम क्या है? सुदेवी कृष्ण की सखी है राधा रानी की, उनका गांव स्वर्णपुर है। उनके पिताजी का नाम रति भानु और बुद्धिमती, माता जी का नाम है भद्रा। पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ है। उनका अंग का रंग जो है वो केसर जैसा है। उनके प्राइवेट कुंज का नाम रसद कुंज है जिसका हरे रंग का वर्ण है। उनका प्रिय वाद्य सितार है। उनकी प्रधान सेवा राधा कृष्ण को इत्र लगाना है, सुगंधित वस्तु लगाना है, और वो राधा रानी की वेणी की रचना भी करते हैं। शुक और सारिका तोता और मैना को ट्रेन करती हैं। उनको पक्षियों के शब्दों का पूर्ण ज्ञान है। चंद्र बादल और पुष्प के बारे में पूरा ज्ञान उनको है। और जो गुप्तचर सखियां यहाँ घूमती हैं स्पाइंग करते हुए क्या चल रहा है, वो गुप्तचर जो सखियां हैं उनके ही निर्देश में स्पाइंग करती रहती हैं। हरे कृष्णा। प्रतिपक्ष की चेष्टा भाव जानने के लिए जो गुप्तचर सखियां घूमती हैं उनका आधिपत्य सुदेवी सखी के पास है। तो इस यात्रा में आपको सुदेवी का भी चिंतन करना है क्योंकि उन्हीं के ग्रुप में आप चल रहे हैं। सुदेवी सखी महारानी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, लाडिली लाल की, बरसाना धाम की, जय जय श्री राधे। श्याम।